प्रसंग है कल बोलना था वो प्रसंग तो गया
वही कभी कभी कल उससे बात क्वेश्चन आया था
ठीक है ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नाम धृक् जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभु जय नीलांबुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ जय पद्माधरी त्रिभ्यां निसेवित पदांबुजम् जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु। तो आज इस भागवत कथा यज्ञ की तृतीय दिवस है। आज के इस सत्र में उपस्थित सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद और मातृ वृंद सभी को मैं अपने संस्था की तरफ से और यहाँ के आयोजकों की तरफ से स्वागत ज्ञापन करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण बलराम राधे श्याम सुंदर निताय गौर सुंदर शील प्रभुपाद के चरण कमल में आप सबके शुभ कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अभी कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री व्यासो वाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। कल हम लोग आलोचना कर रहे थे कि नमिस अरण्य में एकत्रित मुनि मंडली जो उनका प्रधान थे शौनक ऋषि, उन्होंने सौभाग्य क्रम में श्री रोमहर्षण सुत जो उग्रसवा श्रुत है उनके रोमहर्षण के पुत्र, उनके साक्षात्कार किए और आदर सहित उनको आमंत्रित किए कथा सत्र में और उनको प्रश्न पूछे। प्रश्न में 6 प्रकार का प्रश्न था। सुत गोस्वामी को आदर अभ्यर्थना उनके गुणावली को वर्णन करने के उपरांत जो 60,000 ऋषि मुनि थे जिनका 1,000 वर्ष का उपासना के संकल्प लिए थे, उन लोगों का लक्ष्य एक ही था, परम पद प्राप्ति। उन लोग ने बहुत उपादेय, बहुत महत्वपूर्ण 6 प्रकार की जिज्ञासा की। कल इस 6 प्रश्न का आलोचना हुआ था, आप सबको याद होगा सर, अनुमान करता हूं। तो इस प्रश्न को पूछने के बाद, सुनने के बाद उन्होंने पूछे और उस प्रश्न को सुत गोस्वामी ने सुने। सुन करके उनका एतादृश व्यवहार, उनका आचरण से बहुत तुष्ट होकर के, क्योंकि उनका जो प्रश्न पूछना था उनका तरीका भी कुछ ऐसा ही था। तो आज व्यासदेव जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनने के बाद सुत गोस्वामी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस श्लोक में कहते हैं, इति संप्रश्न संघृष्टो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सुत ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और उत्तर देने का प्रयास करने लगे। इति संप्रश्न संघृष्टो विप्राणं रोमहर्षणी प्रतिपूज्य वचस्ते संग प्रवक्तु उपचक्र में। प्रश्न को सुन करके उन्होंने इतने प्रसन्न हो गए कि उनको पूजा करने लगे। बोले, क्या प्रश्न है आपका? इस प्रश्न को सुन करके इतने आदर, इतने उत्फुल्ल हुए कि बोलते प्रतिपूज्य वचस्ते शाम, उनको अभिनंदन किए ऐसे प्रश्न के लिए। प्रश्न के बारे में आगे कहेंगे। अब इस प्रश्न को सुन करके बहुत प्रेरित हुए, मन में बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के प्रवक्तुम उपचक्र में अब बोलने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं। सुत गोस्वामी नवीस अरण्य में ऋषियों के सामने उसको प्रश्न को, जो 6 प्रकार के प्रश्न था, जो प्राय सभी के सभी कृष्ण संबंधी था, यद्यपि प्रथम 2 प्रश्न कि ये था कि समस्त जीवों का एकांतिक कल्याण क्या है, मंगलकारी, दूसरा था सारे शास्त्रों के सार जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाए वो था, और बाकी 4 तो सीधा सीधा भगवान के बारे में था। देवकी वसुदेव के गर्भ से भगवान क्यों जन्म लिए, उनके लीला के बारे में बताओ, उनके अवतार किन किन अवतार से क्या क्या कर्म किए, और धर्मकं शरणंगत, भगवान आपने धाम को चले जाने के बाद धर्म किसका शरण में गया। ये जो 6 प्रश्न किए थे उसको सुन करके प्रश्नचित हो करके उनको अभिवादन करने के बाद उत्तर देने के लिए उपक्रम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। किस प्रकार शुरुआत करते हैं? सुतो वाच, सुत गोस्वामी अपना बोलना शुरू करते हैं। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि, स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि। 2 श्लोक उन्होंने बोले। यह सानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीप अतिथि तीर्षितं तमंधम संसारिणां करुणयाह पुराण गुह्यम तं व्यास सुन उपयामि गुरुं मुनीनाम। तो उनके इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के उपक्रम में सुत गोस्वामी सतर्क होकर के सबसे पहले गुरुपाद आश्रय, गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु कृपा के बिना आपने जो कुछ सीखे हैं, साधन किए हैं, उसका सिद्ध रूप में प्रकट नहीं हो सकता, वो अति आवश्यक है। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसाद नगति कुतोपि। तो इसलिए सब सर्वप्रथम ये जो नियम है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गुरुचरण को प्रणाम करे, उनके आश्रय ले, उनके अनुमति ले और उनको शक्ति के आधार बना करके कुछ काम करे। तो सुत गोस्वामी यही परंपरा के द्वारा इस दो श्लोक में अपने गुरु को वंदना कर रहे हैं। तो जो उपक्रम है, उपक्रम में क्या सोच रहे हैं सुत गोस्वामी ने सोचे कि इन सारे मुनियों ने मुझे जो प्रश्न किए, इनमें सबसे प्रथम प्रश्न तो है कि संपूर्ण जनसमुदाय का एकांतिक कल्याणकारी कार्य क्या है, और दूसरा प्रश्न किए थे कि संपूर्ण श्रुति ग्रंथ वेद सार का जो सार है, जो हमारा मन चित्त को आत्मा को प्रसन्न कर दे। इन दो प्रश्नों को सुनकर के बोले मैं क्या कहूं, इसी प्रश्न मुझे पूछे, मैं तो पढ़ाऊं बहुत कुछ लेकिन नाना प्रकार के शिष्ट आचार्य गण, बड़े बड़े विद्वत पुरुष गण नाना प्रकार के ग्रंथ रचित किए हैं, षडदर्शन है जिसमें संख्य न्याय मीमांसा वेदांत सूत्र उपन्यास उपनिषद संहिता कारिका आदि अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथ है, और प्रत्येक ग्रंथ में वो जो ऋषि मुनि जो ग्रंथकार हैं उन लोगों ने अधिकार भेद से अलग अलग प्रकार उपाय उपस्थापन किए। जीव के कल्याण के लिए, जीव के परमार्थ के लिए, जीव के अधिकार भेद से, क्योंकि प्रत्येक जीव का समान अधिकार तो नहीं है ना, जिसका जैसे अधिकार वो ऐसा ही काम कर सकेगा। आपको गाड़ी चलाना आता ही नहीं, कोई आपको गाड़ी चाबी दे दे, नया गाड़ी बोलो ले लो मोटरनेट करता हूँ चला के जाओ, तो आप अगर खुश होकर बोले मुझे दे दिया गाड़ी चलाऊं जाकर तो क्या होगा, अरे आपका अधिकार नहीं है, तो आप भी मरेंगे और दूसरे को मरवाएंगे। तो इस प्रकार जो कार्य के लिए आपके अधिकार है उस कार्य को आप कर सकते हैं। तो हमारा हाथ में 5 अंगुली है वो भी एक साइज के नहीं है, सब अलग अलग साइज है। अपना हाथ एक हाथ, इसी हाथ में 5 अंगुली से 5 साइज, क्यों सब एक साइज होता अच्छा होता नहीं, अगर एक साइज होता कुछ भी काम नहीं कर पाते अपने, ये सब अलग अलग है इसलिए कुछ काम कर पाते। तो सभी का अपना अपना स्वभाव गुण अधिकार भेद है, अलग अलग है। तो इसी के अनुसार से जो आचार्य गण है वो शास्त्र कारिकाओं में अधिकार भेद के अनुसार उपाय उपस्थापन किया है। बोले मैं कौन सा उपाय उनको बताऊं, भिन्न भिन्न उपाय है, मैं कोई उपाय उनको बताऊं सांख्य से तो मीमांसा को पसंद नहीं आएगा, मीमांसा शास्त्र से बोलूं न्याय वालों को, न्याय को पसंद नहीं आएगा, न्याय के हिसाब बताऊं वेदांत वालों को नहीं आएगा, वेदांत को बोलूं तो उपनिषद वाले पसंद नहीं करेंगे, अब मैं किसको बोलूं। उन्होंने बोले सारे जन समुदाय का कल्याणकारी हो, और मैं इसे कल्याणकारी उपाय तो बहुत उनको बता दूं, और बताने से सबका मन प्रसन्न ना हो, क्या गारंटी कि सबका मन को प्रसन्न हो जाए, सबको सुपसंद करे। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उनका आत्मा अच्छी तरह से सुप्रसन्न हो जाए, ऐसे कौन सा बात बोलूं। ये तो सब अलग अलग प्रकार के ऋषि मनुष्य बैठे हैं, अलग अलग संप्रदाय भी बैठे हैं, और मुझसे एक प्रकार बात कहें जो सबको फिट बैठे, क्या कहूं। तो बड़े घोर विचार में डूब गए, उन्होंने विचार करने लगे क्या कहूं, मुझे फंसा दिए अभी तो, सबके लायक कौन से एक बात में कहूं। तो इस बात में अधड़ मुनि फंस करके सोच कर रहे हैं, उपक्रम में सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या कहूं। तो मन में विचार आया ये जितने न्याय मीमांसा सांख्य आदि के जैसे ऋषि मुनिगण हैं उसके जो कर्ता हैं, ये सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जो मुख्य है, जो उनके उनमें से श्रेष्ठ है, सबसे बड़े मान्य गण्य माना गए है, वो कौन है? भगवान के वांग्मय अवतार साक्षात वादरायण वेद व्यास। वो वेद व्यास ने अपने सामर्थ्य से उन्होंने सारे जनसमुदाय का कल्याण के लिए अनेक अनेक पुराण लिखे, यहां तक कि वेद को विभाजन किए। पहले वेद एक था, इसलिए उनका नाम पड़ा टाइटल वेद व्यास। व्यास शब्द का अर्थ हम जानते हैं, व्यास मतलब एक होता है ना, आप जो स्कूल में पढ़े होंगे थोड़े मैथमेटिक्स, एक सर्कल होता है वृत्त, उसके बीच में एक रेखा काट दो, डिवाइड जो करे दो भाग कर दे, उसको कहते हैं व्यास रेखा, है ना? नहीं, उसका आधा करने व्यासार्थ कहते हैं उसको, जो मेंस्ट्रुएशन पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ये जो एक सर्कल का उसको दो भाग करते हैं, बीच में जो रेखा है उसको कहते हैं व्यास। मतलब एक को दो भाग कर देना ये व्यास के काम है, ये रेखा मार दो, दो एक था दो हो गया। तो बादरायण को वेद व्यास इसलिए पड़ा कि वेद को व्यास डाल दिए, भाग भाग कर दिए उन्होंने, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद को टुकड़ा कर दिया उन्होंने, विभाग कर दिए, वेद विभाजन किए। जो वेद को भी विभाजन करके वेदांत सूत्र लिखे हैं, 18 पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, इतने सारे जन कल्याण के लिए किए हैं, इतने सारे करके भी आपने लिए नहीं, वो तो साक्षात वांग्मय मूर्ति थे भगवान के, आपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए अलग अलग विधि विधान और अधिकार के हिसाब से बहुत सारे लिखे, लिखने के बाद में खुद प्रसन्न नहीं थे, उनका मन उनका चित्त प्रसन्न नहीं था, बड़े फंसे हुए थे, बोले क्या करूं, इतने सारे किया, पूरा जिंदगी भर ये सब मैंने किया, लेकिन फिर भी मैंने खुद ही खुश नहीं, मेरा आत्मा प्रसन्न नहीं है। बड़े विचार में पड़े थे, इतने बड़े समझदार महामुनि वेद व्यास भगवान के आवेश अवतार हैं, उन्होंने सोच रहे थे मैं क्या करूं। तो उन्होंने भी इस परिस्थिति में, जब कभी जीव इस प्रकार के अड़चन में फंस जाता है, तो उपाय क्या है? ना गुरुजनों की सलाह लेना चाहिए। तो श्री व्यासदेव ने, बादरायण ने अपने गुरु नारद ऋषि का सलाह लिया। सो नारद ने उनको बोले, बोले तूने तो खूब उपदेश दिया, बहुत पुराण उपनिषद लिखा, लेकिन जो लिखा उसको खुद समझा? अपने जन का कल्याण क्या होता, अनुभव किया? बिना कल्याण के चीज को स्वयं अनुभव किए बोलने लगा, तो इससे इसलिए तेरा चित्त प्रसन्न है। इसमें एक बात हम लोग को समझना है, कोई बात हम खुद नहीं करते हैं, जानते नहीं, कहीं से इधर तो सुने बताते जाकर, अरे ऐसा करो, अरे तू कभी किया? तुझे खुद की पता नहीं क्या होता, तो क्यों उनको बताता है करने के लिए? तो जो इसे बताते हैं उनका चित्त हमेशा चंचल व्यग्र अप्रसन्न रहेगा। तो इसलिए उनके गुरु जी उनको डांटे, बोले तुम तो खुद ही नहीं किया, खुद अनुभवहीन है, दूसरे को काहे को बता रहे सब इतने सारे, ना सर क्या करूं फिर? तो गुरु के आदेश से, नारद आदेश से, व्यासदेव जी ने, नारद जी ने बोले तुम हरि लीला को ध्यान करो, भगवान हरि को पूरा ध्यान करो, देखो उनको, समझो, अनुभव करो, फिर निष्कलंक बिल्कुल क्लीन केवल हरि के चरित्र वर्णन करो, स्वयं अनुभव करके लिखो, फिर इसमें खुद ही प्रसन्न हो जाओगे, दुनिया सब प्रसन्न हो जाएगा। तो उनके कहने पे व्यासदेव जी ने अपने ध्यानस्थ समाधि स्तर में गए, उनके लिए तो कोई प्रयास नहीं, जाम नियम ध्यान धारणा सब करना पड़ता नहीं, वो तो सिद्ध पुरुष थे, एक तुरंत ही ध्यान लगा, एक बार समाधि स्तर में पहुंच गए। अपना समाधि अवस्था में व्यास जो व्यासदेव ने भगवान को दर्शन किए, किस रूप में दर्शन किए? ब्रजेंद्र नंदन के रूप में दर्शन किए, हाँ, भगवान साक्षात कृष्ण के रूप में उनके दर्शन किए, और केवल कृष्ण को नहीं, सपरिकर सधाम सनाम सगुण सब कुछ देखे, उनके शक्ति को भी देखे और उनके पीछे भी देखे कि माया खड़ी है, सामने नहीं याद आई है, भगवान के पीछे माया खड़ी, उसको भी देखे। देख करके समझ करके भगवान को प्रार्थना किए, उनकी कृपा से सिक्त हो करके भगवान के कृपा को अनुभव करके उनके लीला को अनुभव करके फिर विशुद्ध भगवत हरि लीला चरित लिखे, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये महापुराण आख्यान हुआ, दस लक्षण संपन्न श्रीमद् भागवत। और जब इस पुराण को उन्होंने लिखे, लिखने के बाद उन्होंने स्वयं तृप्त, उनके आत्मा सुप्रसन्न हो गया, बिल्कुल फिट हो गए, प्रसन्न हो गए, कोई उनका टेंशन नहीं रहा था। तो सुत गोस्वामी सोच रहे हैं, जो स्वयं मुनि मंडली के अधिकारी वेद व्यास जी ने जब इस अधड़ भूमि में फंसे हुए थे, उन्होंने जो अपने गुरु जी के आदेश प्राप्त करके सलाह ले करके आपने समाधि योग में बैठ करके अनुभव करके जिस शास्त्र को आपने परिपक्व अवस्था में लिखे, और इस शास्त्र को लिखने के बाद में तुरंत उनका आत्मा सुप्रसन्न हो गया, फिर उनका जो टेंशन था, चित्त चंचल्य था, वो बिल्कुल शांत हो गया। और केवल इतना नहीं कि व्यासदेव स्वयं प्रसन्न हो गए, वो तो शांति नहीं था, अशांत थे, शांत हो गए, केवल वही शांत हो गए, बात नहीं, ये लोग कहे कि सारे लोग भी शांत होना चाहिए, बोलते हैं कि उनको उनके पुत्र को उन्होंने पढ़ाए, तो रखे थे छिपा करके, उनके पुत्र को पढ़ाए अधिकारी देख करके, उनके पुत्र ने, जबकि व्यासदेव और किसी को नहीं बता रहे थे, बहुत दिन वेट किए अपने पुत्र को दिए, पुत्र ने महाकरुणा मूर्ति है, करुणा के साक्षात मूर्ति मग्रह है। तो उन्होंने परीक्षित का अंतिम महासभा में पहुंच गए और वहां उसको प्रकट कर दिया, वही भागवत को जो बोले, तो उसमें 7 दिन के अंदर परीक्षित का तो परम पद प्राप्ति हो गया, और जितने परीक्षित के सभा में बैठे थे सब शांत, एक बार बोले बाप रे बाप, ठीक है, बिल्कुल सभी निर्णय हो गया कि यही है, टेस्टेड होके करके सर्टिफाइड हो गया, बोले जो ये ग्रंथ है, ये भागवत है, तो उसी को मैं बोलूं, ये तो परीक्षा भी है, व्यासदेव ने उसको किए स्वयं प्रसन्न हो गए, और उनको उनके बेटा ने बोला तो जो सुना सो प्रसन्न हो गए, तब फिर इधर उधर क्यों चिंता करूं, इसको ही बोलूंगा, ये तो टेस्टेड होके ऑलरेडी है, परीक्षा करके दिखा गया, तो उसी को ही बोलू। तो भागवत बोलने के लिए मन में विचार लाए, बोले और कुछ नहीं बोलूंगा, सारे शास्त्र सार भागवत को ही बोलूंगा, क्योंकि अब भी मैंने सुनकर क्या आया, परीक्षित की सभा में सुत गोस्वामी बैठे थे, वो अपने गुरु जी सुखदेव के मुख से सुने थे, सुने मतलब बहुत अटेंटिवली सुने थे, इसलिए उनका नाम है उग्र श्रवा, सुनने में बहुत उग्र होकर के सुने थे, तो इतने अच्छे से सुन करके आए, तो उसको बोलना, अभी बोलना तो बोलना चाहिए, केवल अध्ययन करने से ज्ञान पकता नहीं, अध्यापना करने से और पक जाता है, कोई चीज आप सुने पढ़े तो उसको किसको पढ़ाए तो बिल्कुल फिट हो जाता है, आपके अंदर बैठ जाता है, तो बोले वो सुनकर आया, उसको बोल देने से पक्का हो जाएगा, उसी को बोलूं फिर, वही तो सबके प्रसन्न देने वाला है। तो भागवत को बोलने के लिए मन में डिसाइड किए, यही उनका उपक्रम था, प्रश्न देने के समय में जो विचार करते उपक्रम कर रहे थे कि मैं भागवत ही बोलूंगा, ये डिसीजन ले लिए, तो भागवत बोलूंगा। भागवत के जो मुख्य वक्ता है इस संसार में, जो भागवत को उदय कराए, और उनके जो श्री गुरुदेव जिन्होंने इस भागवत को व्यक्त कराए, उनका वंदना करना पड़ेगा। तो उन परम परमहंस चुड़ामणी भागवत वक्ता श्री सुख मुनि को, सुखदेव गोस्वामी को, अपने गुरु जी को वंदना कर रहे हैं, यही उपक्रम उनका, पहले प्रश्न उत्तर देने से पहले गुरु जी की वंदना करते हैं, भागवत कहूंगा, भागवत के प्रथम वक्ता तो मेरे गुरु जी हैं, तो उनके वंदना करते हैं, वंदना करते हुए उनके गुण को थोड़ा याद करते हैं, मेरे गुरु जी कैसे हैं, क्या याद करते हैं, यं प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, यम शब्द से बोलते हैं कि जम इति मतलब जो, जो मतलब कौन, मेरे गुरुजी, जब मतलब जो मेरे गुरुजी हैं वो कैसे हैं, न प्रव्रजंतम अनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनि मानुतस्मि। उनको मेरे गुरुजी को मैं वही मुनि मानस हंस परमहंस चुड़ामणि को मैं प्रणाम करता हूं। वो कैसे हैं, उनके गुण थोड़ा बोलते हैं। जम जो प्रव्रजंत, प्रव्रजा, प्रव्रज्या एक शब्द है, आप लोग शायद सुने नहीं होंगे। प्रव्रज्या का अर्थ है सन्यास, सन्यास को प्रव्रज्या कहते हैं। अनादिकाल से इस माया हत जीव, माया के लाठी खलाथी खाते हुए, पदाघात सहते हुए कृष्ण को बराबर भूल चुका है, आदि हट चुका है। आदि समझते ना आप, अपने बेटा थोड़ा गड़बड़ किया, गाली दी, फिर दूसरे दिन गाली दी, चौथा साल भर डेली गाली दी, तो फिर गाली का कुछ महीना करेगा, ओ डाइजेस्ट कर ले, वो तो नॉर्मल हो जाएगा। पहले दिन करो थोड़ा सोचेगा, बराबर गाली दो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग के माया के कष्ट को सहते 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 इतने नॉर्मल हो गया, हमको पता नहीं चलता ये किसी कष्ट, ठीक है हम ओके। हम इतने बेहद इतने दिन से उस कष्ट को सहते 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 कष्ट में रच पच गए, पक गए कि कष्ट हमको पता ही नहीं चलता। हम उसको बोलते हैं ठीक है, तो उसमें क्या है, यही तो है संसार में, इसे होता रहता है और क्या है? थोड़ा रोना, थोड़ा धोना, थोड़ा हंसना, यही तो संसार है, चार चक में सब। तो कष्ट महसूस नहीं होता क्योंकि इतने कष्ट भोग कर इतना दिन से नॉर्मल हो चुका है। तो इसी प्रकार की इस कलिहत जीव की अवस्था में जो कभी कभी बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहे हम लोग, जो कभी कभी बड़े सौभाग्य के कारण किसी किसी का चेतना जागृत होता है, चेतना जागृत होने से उन्होंने ईश्वर सेवा परायण होता है। अब संसार सेवा से मन हट, थोड़ा ईश्वर सेवा परायण होता है। तो जो इस मायाहत ग्रस्त जीव कभी कभी चेतन होकर के ईश्वर सेवा परायण होता है, उसको गृहस्थ करके कमाना जाएगा। मतलब जो जीव अभी ईश्वर सेवा परायण नहीं है, घर संसार में गृहस्थ भी नहीं है, वो क्या है, गृह मेधी पशु है, उनको गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता। तो इन गृहस्थ धर्म, मतलब गृहस्थ एक धर्म है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, घर में रहते हुए नाना प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भगवान की सेवा के हिसाब से उसको करता है, वो गृहस्थ है। लेकिन इसमें भी किसी का चेतना तीव्र हुआ, भगवत अनुराग वृद्धि हुआ, भगवान इसका अनुराग वृद्धि हुआ, तो उन्होंने भी डिसाइड किया ये गृहस्थ कर्म प्रतिकूल है, भगवत अनुराग भगवत भजन में प्रतिकूल है, ये नहीं बन पाता मेरे से इसमें, तो मन में ये इस विचार करके सोचा कि ना छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ करके नित्य समय के लिए, हमेशा के लिए वो चला जाता है इसको त्याग करके। तो वही जो त्याग करके जाना, उसका नाम है प्रव्रज्या, प्रकृष्ट रेपण ब्रजन, गया फिर नहीं आया, प्रव्रजा। इसी को विधि रूप में वैदिक नीति में संन्यास एक दंडी त्रिदंडी करके धारण करते हैं, इसको प्रव्रज्या कहते हैं। तो बोलते हैं मेरे गुरुजी जम प्रव्रजंत, जो प्रव्रज्या व्रत को धारण किए, लेकिन कब धारण किए, कैसे धारण, अनुपेत उपेत कृत्यम। अनुपेत मतलब बिल्कुल पास में है लेकिन मिला नहीं, कैसे, व्यासदेव के पुत्र हुए सुख गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, पिताजी समझते हैं मेरा बेटा है, लेकिन हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा होकर के मैं देख ही नहीं पाया उनको, मुझे ना देखा, मैं उनको दिखा दे। अरे कोई दूर की बात हो, कोई और संबंधी हो, कहीं हो, तुम्हारे घर में पैदा हुआ, तुम्हारे पत्नी से पैदा हुआ, तुम्हारे पुत्र गृह में, तुम उनको दिखा नहीं, ना नहीं, इस अनुपेत, इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है। इतने निकट संबंधी, इतने निकट संपर्क होकर भी आपका विनिमय भाव विनिमय नहीं हो पाया, संग नहीं हो पाया, इसी बोलते अनुपेत। निकट होकर भी अप्राप्य, और उपेत कृत्यम जन्म होने के बाद में जो संस्कार आदि होता है, बहुत सारे संस्कार होता है, 16 संस्कार है टोटल, तो उसमें अनेक संसार होता है, जन्म करण वादे नाभि छेदन उपनयन आदि संस्कार होता है। कोई संस्कार भी नहीं किए थे उन्होंने, जन्म हुए चल पड़े सीधा, ऐसे संन्यास लेने के लिए अधिकारी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण होंगे ब्रह्मज्ञ होंगे उनका अधिकार होता है, बाकी किसी का इस चीज में प्रप्रज्ञा में सभी का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तो जन्म हुए, शास्त्र कहता है जन्म नाम जायते शूद्र, जो भी प्राणी जन्म होता है वो शूद्र बनकर होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं होते हैं, जन्म सबका एक ही डिजाइन का होता है, एक ही प्रकार का होता है, सारे वृद्धावस्था में रो रो कर पैदा होते हैं, सारे शूद्र हिसाब में पैदा होते हैं, जन्म नाम जायते शूद्र, जन्म में सारे शूद्र होते हैं जन्म अवस्था में, फिर क्या होते हैं संस्कारे द्विज उच्यते, तो उनका संस्कार किया जाता है, अलग अलग परिवार में अलग अलग प्रकार संस्कार होता है, ब्राह्मण घर का संस्कार थोड़ा विधि विधान से होता है, उनको उपनयन आदि कराते हैं, उपनयन जानते ना व्रतो उपनयनम, जिसको आप क्या करते हैं बड़ो घर जनेऊ संस्कार, आप जनेऊ बोलते हैं, वो जनेऊ संस्कार को व्रत उपनयन संस्कार कहा जाता है, उस संस्कार जिसका होता है उसका दूसरा जन्म होता है द्विज, इसलिए ब्राह्मण का एक नाम है कि दो बार जन्म होता है उनका, क्योंकि फिर ही जन्म होता है संस्कार के द्वारा, उनको दोबारा जन्म किया गया, परिमार्जित जन्म परिष्कृत कहा गया, क्योंकि पहले अपरिष्कार थे, तो कई प्रकार के अभ्यास आदि क्रिया मुद्रा दे करके उनको दोबारा परिष्कार करके संस्कार करके सुधार करके दोबारा जो अभ्यास दिए उसको कहते हैं द्विज, संस्कारे द्विज उच्यते, इस उपनयन जनेऊ धारण करने वाले द्विज कहते हैं। सभी घर में इस प्रकार कड़ा कड़ी संस्कार नहीं होता, तो जिसके घर में होता है ब्राह्मण परिवार में वो द्विज कहे जाते हैं, संस्कार के बाद द्विज बनने तो शूद्र होते हैं, नियम के अनुसार तो 6-7 साल लेकर लेना चाहिए, लेकिन आजकल तो पता नहीं कितने साल तक नहीं करते, भूल गए से व्रतोपनयन अभी संसार में ब्राह्मण परिवार में देखा नहीं जाता, मैं इसे से देखा हूँ 25 साल हो गए अभी नहीं हुआ नहीं उनका जन्म। अरे तो संस्कार द्विज उच्यते, केवल संस्कार करने से द्विज सिना होंगे नहीं कि ब्राह्मण नहीं बने अभी, फिर क्या करना पड़ेगा द्विज से, फिर पढ़ेंगे वेद शास्त्र आदि पाठ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुरु पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास बैठकर पढ़ना पड़ेगा, तो गुरु पादाश्रय करके अध्ययन करेंगे गुरुकुल में जाकर के, वेद आदि अध्ययन के वेद पाठित भवेत विप्र, इस वेद पाठ आदि करने के लिए वेद ज्ञान के द्वारा स्नात होने के बाद उनका पदवी क्या होगा विप्र पदवाच्य होगा, अब विप्र कहा जाएगा, सूत्र से द्विज हुआ, द्विज से वेद आदि पाठ करके विप्र बनेगा, फिर वेद पाठ है भवेत पित्र, फिर वेद पाठ करने के बाद उसको अपना आचरण करेगा, ध्यान करेगा, साधन भजन करेगा, जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेगा, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म ज्ञान होगा तब ब्राह्मण कहलाएगा। अभी आप जो जेनू डाल के ब्राह्मण बनते हैं अभी समझ लो किस स्तर में है, 2 रुपये में धागा टांगने से थोड़ी होता है, वो बड़ी घूमते रहते हैं, तो इस स्थिति में ब्राह्मण होता है, और ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद में और पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है डिलीट, क्या विष्णु तत्व जानाति इति वैष्णव, उसके बाद में स्नातकोत्तर है, जो परिपक्व ब्राह्मण है उस अवस्था में वैष्णव होना पड़ता है तब जाकर के, तो इसी स्थिति में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते जन्म से ही जन्म हुए चल पड़े, कहते कि सुखदेव गोस्वामी हमारे तरह ऐसे बद्ध जीव थे नहीं, वो कोई बद्ध जीव थे नहीं, उनको कोई संस्कार का कोई आवश्यकता नहीं था, वेद पाठ आदि करने का, पहले से पढ़े लिखे सब थे, पहले से डिग्री करके आए हैं, ऐसे थे अभी बताएंगे कैसे थे वो, तो इसलिए उनको कोई संस्कार की आवश्यकता, उपेत कृत्य, उपेत कर्म, उपनान आदि संस्कार का कोई आवश्यकता था नहीं उनके लिए, वो चल पड़े। चल पड़े तो पिताजी हताश हो गए, बेटा पैदा हुआ भाग गया, तो उनके पीछे दौड़े, पुत्र रे हा पुत्र, हा पुत्र रे कहां चले जा रहा, उनके पीछे दौड़े। बोलते द्वैपायन विरह कातर आज हुआ, विरह के कारण पुत्र विरह से दुखी होकर के पुत्र के पीछे दौड़े, रे पुत्र हा पुत्र करके उनके पीछे दौड़े, कातर होकर के तन्मयतया। तन्मय शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? तत्मय, तन्मय। कोई वस्तु के बारे में आप खूब चाह रखते हैं, उसके बारे में खूब सोचते रहते हैं, बहुत आशा करते हैं उसको पाने के लिए, तो उस वस्तु के लिए आप तन्मय हो जाएंगे। तन्मय मतलब वही वस्तु जैसा ही हो जाएंगे, वही वस्तु जैसा हो जाएंगे, बिल्कुल उनके बारे में सोचते। तो तन्मय मतलब यहां जो व्यासदेव ने अपने पुत्र के बारे में बिगड़ होकर के उनके बारे में, पुत्र थी तन्मयतया, पुत्र की तरह ही हो गए, और उनके से विकल अवस्था को देख करके जंगल में दौड़ रहे थे, जंगल में जो पेड़ वृक्ष सब खड़े थे, तरबो विनेदु, तरु लोग भी तन्मय हो गए, पेड़ पौधा भी तत्मय मतलब सुखमय हो गए, सुखदेव गोस्वामी जैसा ही भाव उनके अंदर आ गया, तो वो लोग भी कहने लगे तन्मय होकर, ये बोलते हा पुत्र हा पुत्र, वो भी बोले हा पुत्र हा पुत्र, कैसे बोले? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि के हिसाब से। बेटा तो कुछ जवाब नहीं दिया, जवाब मिलता है पेड़ों से, वो पेड़ को देखते हैं, हा पुत्र अरे पुत्र अरे पुत्र, वो पेड़ जवाब देते हैं, तन्मय दया तरभो, तरुलोक की तन्मय होकर बोलते हैं। तरुलोक क्यों बोले, पेड़ क्यों ऐसे बोलते हैं, उसका कई अर्थ करते हैं। बोलते पेड़ कहते हैं कि पेड़ के द्वारा वो जो मेरे गुरु जी सुखदेव थे वो कैसा थे ना, तंग वो सर्वभूत हृदय, सारे प्राणियों के अपने योग मूल से सारे प्राणियों का अंतर में प्रवेश कर सकते हैं, सारे प्राणियों को मन में प्रवेश कर सकते हैं, सुखदेव का ये पावर था, मेरे गुरु जी के पावर था, वो बोलते हैं तंग सर्वभूत हृदय, सारे भूत के सकल प्राणी, भूत मतलब केवल जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधा भी उनके अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, ये शक्ति उनका था, इसी शक्तिमान पुरुष सुखदेव जी। तो वो पेड़ के अंदर प्रवेश करके अपने पिताजी को समझो बताते हैं कि पिताजी ये भाव इसे देते हैं कि पिताजी कहते हैं रे पुत्र, तो उस आवाज सुनाई पड़ता, पेड़ लोग कहते हैं रे पुत्र क्यों, तो मानो पिताजी को कहते हैं कि आप मुझे पुत्र पुत्र अभी कहकर मेरे पीछे भागते हैं, पता है पिछले जन्म में आप मेरा पुत्र थे, आप मुझे अभी पुत्र कह रहे हैं, आपको पता नहीं आप भी मेरे पुत्र थे, तो ये पिता और पुत्र ये तो हम सब बनता रहता है, कभी मैं बनता हूं पिता, कभी आप बनते हैं पिता, ये तो हम सब बदलता रहता है, ये तो नश्वर है, आज वो पिता है कल वही पुत्र है, कल वही पुत्र कल पिता होता है, तो ये थोड़ी दिन की नाता में संबंध में क्यों फेर पड़े, मैं ये माया में क्यों पड़े, जाओ समझो उसको, ऐसे कहते हैं। तो दूसरे आचार्य बोलते नहीं 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 ऐसा बात नहीं, क्योंकि व्यासदेव जी ने कोई साधारण पुरुष नहीं थे, व्यासदेव साक्षात भगवत वाङ्मय अवतार थे, आवेश अवतार थे, और उन्होंने सारे सिद्धि साधन करके भगवान को समाधि योग से देख करके अनुभव करके उनके विशुद्ध लीला वर्णन करके बिल्कुल पक्व परिपक्व अवस्था में थे, तो उनको इसे मायाग्रसित नहीं हो सकते, ये साधारण संसारी लोग जैसे बेटों के पीछे हा मेरा पुत्र हमें रोते रहते हैं, वैसे नहीं रोए उन्होंने, तो फिर कैसे विरहकातर, विरहकातर शब्द आया, बोलते नहीं ऐसा विरहकातर नहीं जैसे हम लोग संसारी विरहकातर, वो विरहकातर कैसा, क्योंकि वो जानते थे, व्यास भी जानते थे, मेरा जो बेटा है ये कोई साधारण मनुष्य पुत्र नहीं है, ये महाभागवत परमहंस चुड़ावणी साक्षात सुख भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, सुख है, ऐसे कथा आता है कि भगवान ब्रज लीला में जब ब्रज में रहते थे, भगवान रहते थे नंदग्राम में, और उनके शक्ति श्री राधिका वर्षणा में रहती थी। तो लोकाचार के हिसाब से आपस में मिलन नहीं हो पाता था, बहुत बाधा आता था। तब जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं, लोकल फोन भी नहीं था, सिटी फिटी कुछ था नहीं, तो कैसे बातचीत होगा। कभी कभी नंदगांव वर्षण के बीच में एक वन है जिसका नाम है संकेत। इस जगह का नाम संकेत इसलिए पड़ा, उसी से संकेत दिया होता था। संकेत समझते ना, इशारा। इस वन में जाकर के इशारा देते थे। वो तो स्त्रियां नहीं जा सकती, कभी कभी वो भी जाती थी अपने साथ सहेलियों के साथ, कभी कभी भगवान भी आते थे अपने ग्वाल वालों के साथ। संकेत कैसे देते थे देखिए, क्या बुद्धि उनका था। शीशा लेकर जाते थे पकड़ में, छोटे छोटे शीशा लेकर, जो धूप में शीशा को ऐसे करके उनके महल के अंदर ऐसे वो क्या बोलते हैं, लाइट पड़ेगा ना, पूरा खिड़की के अंदर लाइट पड़ेगा, किस प्रकार लाइट हिलने से क्या उसका अर्थ होता है, उनका भाषा वही समझेंगे, वही पढ़े भाषा। तो वही संकेत देते थे ऐना में, ये जो सूर्य के लाइट का और जो रिफ्लेक्शन उनके खिड़की के अंदर जाकर के उनके भवन के अंदर पड़ता है, तो उसको देखकर समझ गए कि वो आ गए, ये टाइम फिक्स हो गया, ये ऐसी बात है, ये संकेत इशारा होता था, ये संकेत बन। लेकिन संकेत होने पर भी कभी टाइम फिक्स होता है लेकिन फिर भी गड़बड़ होता है, और कहां चले जाते हैं, आते ही क्या हो गया, दुख होता था। तो इसलिए राधा रानी एक आपने कई सारे उनके सहेली थे, सखी थे, एक उनके नित्य सखी थी जो उनके मन की बात, वो डाकिया थी वो जा करके उनके मन की बात वहां कहे, पर उनके मन पर आ कहे। सभी सखी स्त्रियां थी ना, वो सब जा नहीं सकते हैं, पर उसके घर में नंद यहाँ इस भवन में नहीं जा सकते हैं, कहीं सिक्योरिटी है, कहीं रोकटाक है, नहीं जा सकते हैं। तो एक ऐसे सखी थी राधा रानी के जो अपने सबसे पेट प्रिय थी, राधिका जी उनको स्वयं हाथ में पोसती थी, पालती थी, खिलाती थी, सिखाती थी, पढ़ाती थी, अपने प्रिय अपने बनाकर रखी थी, वो थे उनके पालित सुख पक्षी, राधा रानी के प्रिय तोता। तोता को पढ़ाने से बोलता है ना, मनुष्य से बातचीत करता ना, ये तोता में स्वभाव तभी आया क्यों, राधा रानी ने सिद्ध कराए थे उनको कि तू भी मनुष्य से भाषा बोल दो जाकर के, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात वहीं वहीं बता देना जाकर के चुपचाप, समय सुविधा देकर के। तो तोता में गुण राधिका जी दिए थे, तो उन्होंने अपने पालित तोता को, तोता के नाम को सुख कहता ना, सुख पक्षी, तो सुख पक्षी की वो पाली पालन करके रखी थी। तो जिसमें राधिका जी अपने भाव को व्यक्त करती थी, वो राधा राधिका जी की अंतर भाव को लेकर के भगवान के सामने व्यक्त करती थी वो, और उनके भाव को फिर ला करके उनको व्यक्त करती थी। ये जो दोनों प्रिया प्रीतम के बीच में ये जो महाभाव विनिमय करती थी, जो भाव बिना करने वाला वो जो दोनों के भाव को नहीं समझेगा, अंतर भाव को, वो कैसे कर सकता है, वो तो सांकेतिक भाषा में शर्ट हांड में बोल देंगे, उनको परपट लिख कर वो बताएगा, तो इतना अभिज्ञान तो होगा ना। जो साक्षात राधिका जी के पालित, उनके द्वारा भाव को ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेंड प्राप्त है, तालीम प्राप्त है, उनको कोई फिर संस्कार वेद पाठ आदि करना पड़ेगा। अरे जो गोपियां है ब्रज के, वो लोग जो उद्धव जी तभी जमाने में सबसे हाईली एजुकेटेड पुरुष थे, वो यहाँ वर्ल्ड में नहीं पढ़े थे, वो जाकर के वहाँ ग्रेजुएशन किए थे, कहाँ पे, स्वर्ग में, हाँ बृहस्पति आगरा में, वहाँ जाकर, यहाँ के यूनिवर्सिटी में नहीं, बोले ये धरती में नहीं, स्वर्ग लोक में अपना ग्रेजुएशन करके आए थे, बृहस्पति से शिष्य बने थे उद्धव जी। उन्होंने गए और समझाने के लिए जाकर बोले, वेद शास्त्र श्रुति पुराण से ऋचाओं धारण करके बताऊंगा, लेकिन उद्धव जी को तभी पता चला कि ये जो ग्वालिन, जो गाय दुहने वाली, दधि मंथन करने वाली गोपी, वो वेद शास्त्र के नियम को नहीं मानने वाली है, बल्कि उनके कार्य को, उनके आचरण को वेद अपने भाषा में लिखेगी कि यही है शास्त्र, यही है वेद, वेद उनको फॉलो करेगी ना, वो वेद को नहीं फॉलो करेंगे, वो क्यों फॉलो करेंगे, वेद श्रुति शास्त्र उनके क्रिया मुद्रा को फॉलो करेंगे, बोले यही सार है, वो जो करती है वही वही वेद, वेद का वचन है। तो जब उनके सखियों का ऐसे हाल, जो स्वयं को पाल पोस कर सिखा करके पढ़ा करके रखें, तो उनको फिर वेद क्या पढ़ाना है। वो सुख पक्षी तो उनके सुख थी। अब भगवान ने जब लीला संवरण करके गए, चले गए तो तोता बिचारी दुखी हुई, जो राधिका जी की प्यार पाई, उनके हाथ की सेवा पाई खाई, उन्होंने कैसे विकल होकर घूमता था, हमेशा याद करती थी मेरे प्रभु राधिका जी क्या करे, बड़े दुखी होकर घूमती थी। घूमते घूमते संसार छोड़ करके चले गया, जा करके इस भारतवर्ष में उत्तर दिशा में मानसरोवर के ऊपर, कैलाश के ऊपर, चोटी के ऊपर अकेली जाकर बैठ करके दुख अनुताप करते, उन्होंने सोचना कब क्या होगा, कब उस भाग्य मिलेगा, अकेली जाकर बैठ कर ध्यान करती थी। कैलाश के पास में बैठ करके ध्यान करती थी, वहां कैलाशपति भगवान शंकर जो भगवत तत्व ज्ञाता है, उन्होंने अपने अनुभव भगवत लीला अपने पत्नी भवानी को सुना रही है। भवानी तो है, भवानी तो बड़ी शक्तिशाली है, सख्यात देवी है, लेकिन स्त्री बुद्धि होने के कारण शरीर उनको तो आलसी आगे थोड़ा सो गई, लेकिन वो शिव जी तो बोलते जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि उन्होंने अपने समाधि में आ चुकी है, वो तो नहीं सुन रही है, लेकिन ये तोता सुन रहा था। शंकर जी का जो भगवत लीला उद्गार इतने अच्छा लगता था उनको, बड़े प्रसन्न चित्त से सुन रहा था, तो उन्होंने देखा कि तो पार्वती सो गई, अगर शिव जी को पता चलेगा तो अभी कहना बंद कर देंगे, तो इसलिए वो जब पूछते थे सुना ना, पार्वती हूं करती, लेकिन नींद में हो गई तो हूं बंद हो गया उनका, तो उनको अभिकल नकल करके वो तो तानवी हुंकार मारने लगी। मतलब सुनती थी, शिव जी ने बोले ठीक है सुन रही है, बताते गए वो सुनती रही, बिल्कुल नकल करके अपना हुंकार मारती थी, तोता करती थी, भगवान शंकर बोलते गए भागवत, वो सुनती रही। जब भागवत संहिता पूरा करने के लिए बोले, अब देखे नजर आ रही तू तो सोई हुई है, हुंकार कौन करती थी, उनको ज्यादा कब क्या बोलते थे मुझे, अरे तू सोई थी ना, कब से सोई हूँ, अरे तू जो आवाज करती ना, मित्र नहीं क्यों, अरे इधर उधर देखे नजर पड़ गया, तो पास में बैठ करके नकल करी थी। बोले बदमाश, तू मेरे पत्नी का नकल कर रही। अब गुस्सा आ गया शंकर जी को, अत्रिशूल उठा के उसको मारने के लिए दौड़े तो सुख पखी भागी, दौड़ी उन्होंने, दौड़ते दौड़ते यहां वेद व्यासी अपने पत्नी, उन पुत्र ही नहीं होता था, बहुत भारी उपासना यज्ञ व्रत तप किए करके पुत्र पात्र के लिए बहुत कुछ किए। अब किए तो आशा करते थे कि पत्नी उनका पुत्रवती होगी, तो इतने में ही वो तोता आई, वो सोई थी उनकी पत्नी, तो आकर के उनके मुख के अंदर प्रवेश कर लिया। वो ऐसे बोलते ना, उसे क्या बोलते हैं, जमाई 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 ले रही थी, वो प्रवेश करके मुंह के अंदर उनको, महाजोगी थी ना, सुख साधारण की तो ना, महाजोगी थी, सुख मन करके उनके मुख के अंदर उनके गर्भ में चली गई। तो शिव जी दौड़ कर आए द्वार के पास, बोले कहाँ गया, इधर घुस गया, बोले उनके मुख के अंदर घुस गया, उनको मारना है मुझे। व्यास जी बोले हाँ प्रभु क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों, किसको मारना, तो ये चिड़िया तोता भाग गया, इसके घुस गया आपके पत्नी के मुख में, नहीं क्यों उसको मारने के लिए इतने गुस्से में दौड़े, क्या दोष है उनका। तो शिव जी खड़े हुए, अच्छा क्या दोष है, दोष तो कोई खास नहीं है, दोष तो यही है कि मेरे पत्नी का नकल कर रहा था उन्होंने, क्यों नकल कर रहा था, क्या जरूरत पड़ा नकल करना, नहीं मैं बहुत उत्फुल्ल चित्त होकर के भगवत लीला कथा भागवत कह रहा था, मेरा पत्नी को सुना रहा था, तो पत्नी सुन रही थी, लेकिन पत्नी स्त्री स्वभाव के कारण सो गई, अब मुझे पता नहीं, वो तो बोलते सुना ना हूं, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन वो कभी सो गई, उन्होंने नकल कर रहा था, और मैं सारे कथा तो वो सुन लिया, तो इसलिए वो गुस्सा आया कि मेरी पत्नी का नकल क्यों कर रहा था, मैं मेरी पत्नी को बता रहा था, वो सुन लिया सारे। तो व्यास ने बोले बारे बा भोले शंकर, भागवत की कथा पर आप जिससे वक्ता के श्रीमुख से शुद्ध रूप में कैलाश में बैठ कर कोई सुने तो वो तो अमर हो ही जाएगा ना, वो कैसे मर सकता है ना, बात तो सही है, वो तो नहीं मर सकता, मेरे मुख से अमर कथा सुना भागवत कथा, वो मर कैसे सकता है ना, वो तो नहीं मर सकता, तो फिर आप क्यों पीछे मारने के लिए पड़े होंगे, अरे नहीं मारेंगे, तो उनका आशीर्वाद देकर चले गए। हाँ सब तो जो सुना सब आप मेंटेन होकर रहे, सब याद रहे आपको, शिव जी प्रश्न होकर वरदान देकर चले पड़े। चल पड़े तो वो तो स्वत सिद्ध महात्मा पहले से थी, वो बाद में बाबा जी ने और सुना सुना कर वरदान देकर और एक्सपर्ट कर दिया उनको। अब लेकिन गर्भ में जाकर बैठे, अब उनको बाहर जाने का मन नहीं किया, बोले संसार बड़े असार है, बहुत गड़बड़ है माया, वहां नहीं जाएंगे, वहीं रहे। गर्भ हुआ था, गर्भवती थी व्यास की पत्नी, तब काल जी से बता रहे थे 9 महीना, 9 महीना हुआ, 9 महीने के बाद पुत्र प्रसव होना चाहिए, पुत्र बाहर नहीं आ रहा, जन्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, एक आध महीना ज्यादा, 10 महीना हुआ, 11 महीना हुआ, 12 महीना हो गया, नहीं 13, 14, 1 साल होकर के और ज्यादा हुआ। अरे किसका 1-2 साल गर्भ हुआ, अगर संतान प्रसव नहीं होता वो चल फिर सकते हैं, चल फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो व्यास पत्नी के हाल खराब बिल्कुल पड़ी पड़ी इस दुर्दशा में, 1 साल नहीं, इस प्रकार से 12 साल तक गर्भ से बाहर नहीं आए, वहीं बैठे रहे। लड़का 12 साल हो चुका है, 12 साल का लड़का पेट के अंदर रहेगा, पेट कितना बड़ा होगा है? भाई 1.5-2 किलो शिशु रहता है तो किसी हालत होता है, अब 12 साल का लड़का तो कम से कम कितना वेट होना चाहिए, 40-50 साल हो जाना चाहिए ना, नहीं ना 40-50 किलो का नहीं वजन, तो 12 साल तक बाहर नहीं निकले, तो पति पत्नी दोनों दुखी, रोते रोते परेशान, वो बात भी करते थे, 12 साल लड़का ना बातचीत करता है, बातचीत करते थे, पिताजी उनको बोलते थे, माता तो पड़ी सोकर उठ नहीं पा रही है, पिता बातचीत बोलते, बेटा मेरे तेरे माँ इतने कष्ट सह रही है, प्लीज बाहर आ जाओ ना, पिताजी बाहर दे जाऊंगा, यहाँ ठीक है, क्या ठीक है, मैं क्यों है ना, बाहर जाने से माया माया से तो माया पकड़ेगा, तो इसलिए उन्हें यहाँ ठीक ठाक है, निर्माया है। अरे पेट के अंदर ठीक से खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, ना ये सब ठीक है सहन कर, लेकिन माया से बचा हूँ, इधर बाहर में जो संसार माया पकड़ लगा इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये तंग होते थे, बहुत समझाते थे, वेद वेदांत से ऋचा पढ़ करके समझाते थे। एक दिन कातर होकर प्रार्थना किए, बेटा मेरे तू क्यों इतने कष्ट दे रहा है, मुझे भी अपने माँ को भी कितने कष्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं देख रहा है, उनके दुख तुझे पता नहीं चलता, तू तेरे मर से बैठा है। बोले पिताजी आप कहते मैं बाहर आ सकता हूँ, आ जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे माया टच ना करे तब आ जाऊं। बोले मैं लिखित जवाब देता हूँ आपको, एग्रीमेंट करता हूँ, आप माया मुक्त होना चाहते हैं, बिल्कुल माया मुक्त रहेगा, हम आपका शादीशुदा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, तो ब्रह्मचर्य रहना कोई बात नहीं, पहले एग्रीमेंट करता हूं। तो बेटा ने अंदर बैठे बैठे कर बोले पिताजी आपका एग्रीमेंट से क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है उसका, आप मुझे जवाब देते हैं, आपका जवाब से क्या मूल्य है, क्यों, मैं तेरे पिताजी हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं वादा करता हूं ना, आपके उदा का क्या मूल्य है, क्यों ना, आप खुद ही माया से फंसे हुए हैं, मुझे आपने कैसे फंसा मुक्त करा सकते हैं। तो व्यासदेव जी बोले तो फिर क्या करूं, कुछ तो बताओ, कुछ उपाय बताओ ना। अच्छा आप पूछते तो मैं बता देता हूं, सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे माया मुक्त करने के लिए, तो जो माया से मुक्त है, मुक्त है नहीं, माया जिसका दासी है, जो माया के मालिक है, वो आकर अगर ऑर्डर देगी तो माया तो डर के मारे छोड़ देगी। बोले मालिक बताते हैं, सार बताते हैं, तो फिर नहीं एक्शन होना चाहिए, वो अगर बताए तो फिर मैं आ जाऊं, तो कौन है ना, मायापति जो है वो आकर बोले, तब मायाध्यक्ष जो है, कौन मायाध्यक्ष है ना, मैं एड्रेस बताता हूँ, आप जाओ, तो गर्भ के अंदर बैठ के एड्रेस बताए। बोले जाओ अभी द्वारका में है, द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में बैठे हैं, उनका पास जाओ, उनको जाके बुला के लाओ, वो मायापति है, मायाधीश है, संपूर्ण माया उनके दासी हैं, वो अगर एक इशारा करते बोल दे तो माया चुपचाप पूछ ही ला करके भाग जाएगी। अच्छा तो जाकर के व्यासदेव जी को जाना पड़ा, इतना दूर कानपुर से द्वारका गए, जाकर के उनको बोले ऐसे ऐसे हाल, तो भगवान बुला के लाए द्वारकाधीश को, तो नरकाधी से आकर फिर एग्रीमेंट एफिडेविट साइन किए, बोले ठीक है सुख मैं बोल रहा हूं, तुझे मेरी माया नहीं लगेगा। तो उनके जवाब सुन करके वो निकले और जवाब दे, जैसे निकले अब पहले से गर्भ के अंदर से माया से मुक्त है तो कौन सा आसक्ति उनको लगेगा, निराश सकत है। निकलते ही आप भाई थोड़ा देखना चाहे तो मेरे पिताजी की दाढ़ी है कि नहीं, काले है कि गोरे हैं, पीछे मोड़ पर देखे ही नहीं, पिताजी का चेहरा कैसा है, माताजी का चेहरा कैसा है, देखे नहीं, सीधा जिस तरफ नाक उसी तरफ चल पड़े। कोई कपड़ा नहीं, कपड़ा तो पहले पहनना नहीं होता, कोई वस्त्र नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई स्नान नहीं, दान नहीं, कुछ भी नहीं, खान पान, सीधा गर्भ से निकले और चल पड़े। पहले से 12 साल के थे ही, आता चला चल पड़े। जब चल पड़े उनके पीछे व्यास देव जी दौड़ रहे हैं कातर होकर के, रे पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करके। तो व्यास देव जो इतने बड़े परम सिद्ध पुरुष थे उनको ऐसे साधारण पुत्र स्नेह नहीं था, वो क्या था ना, उनको अच्छा तरह से पता था ये परमहंस भक्त चुड़ामणि है, अंदर बैठे बैठे द्वारकाधीश के साथ उनका लिंक है, मुझे पता नहीं था, वो बुलाया वो आए। तो ऐसे महाभक्त का संग से विरह हो जाएगा, उनके संग से विच्युत हो जाऊंगा, कुछ क्षण मुझे भी संग दो, इतने बड़े भक्तों के संग से बच जाऊंगा, इसीलिए कातर होकर के रो रहे थे व्यासदेव जी, ना कि संसार के पुत्र स्नेह था उनके अंदर। क्या था उनमें, भक्त विरह। रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का जब वार्तालाप होता है तो इसमें महाप्रभु प्रश्न करते हैं, रामानंद जी उत्तर देते हैं। एक प्रश्न उन्होंने किए, दुख मध्य कौन दुख अटे घोरतर, जितने संसार में दुख है सबसे कठिन घोर दुख क्या है। तो रामानंद कहते हैं कि भक्त विरह विनु दुख नाई और घोरतर, एक भक्त दूसरे भक्त से अलग हो जाता है इससे बढ़कर दुख और संसार चाहिए। तो इसीलिए व्यासदेव आज इससे महाभक्त अपने पुत्र के रूप में इतने निकट संपर्क था वो भी उनसे अलग दूर चला जाता है, इसीलिए रोते हैं, कातर होते हैं, विरह कातर हो जाते हैं, जन्म होकर पुकारते हैं, भक्त संग से वंचित हो जाएंगे। इसलिए तो पुत्र इति तन्मयतया तरभु विनेदु, तो इस प्रकार जाते थे तरु लोग को उनको प्रतिध्वनि करके बताए। इस प्रकार के सर्वभूत हृदयन, तो शुद्ध गोस्वामी ये श्लोक इसलिए कहते हैं कि मेरे गुरुजी जो सुख मुनि जो सुखदेव गोस्वामी, उनका एक शक्ति था कि प्रत्येक प्राणी उद्भिद जीव तक प्रत्येक हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, मन में प्रवेश कर सकते हैं, तरुओं के पेड़ के अंदर प्रवेश कर गए। तो जब निर्जीव पेड़ के अंदर प्रवेश करते हैं वो सर्वभूत हृदय शक्ति है, तो मैं उनके शिष्य हूं, तो मेरे हृदय में वो प्रवेश करें और वो जो प्रश्न के उत्तर जो भागवत वो मेरे मुख को क्या बना करके माध्यम बना कर वही खुद बोले, मेरे मुख से स्वयं सुखदेव ही बोले। इसलिए सर्वभूत हृदयं तं मुनि मानतोस्मि, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं, मान करता हूं, जो सारे हृदय को प्रवेश करने की क्षमता है तो मेरे हृदय में प्रवेश कर ले और करके बोले। मैं क्यों बोलूं, गुरुजी सीधा बोले, उनका पावर है। गुरु और शिष्य की संबंध बोलते हैं कि शिष्य तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के कारण तो आध्यात्मिक गुरु को चुनना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के संबंध होता है वहां, वहां देह के संबंध नहीं होता, आत्मा नित्य है तो इसलिए संबंध भी नित्य होता है, जन्म जन्म गुरु से। तो आत्मिक संबंध जहां होता है, जो वैष्णव जन है, भगवत पुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, वो लोग भी तो अध्यात्म ज्ञान में बढ़े चढ़े होते हैं, ऐसे परम वैष्णवों का करुणा उनके दया तो उनके पास रहता है। लेकिन जिन लोग जिन भक्तों ने अपने आप को शिष्य बना करके कोई परम वैष्णव को गुरु बना चुका है, तो उस गुरु का जो दया उनके पास न रह करके शिष्य के पास रहता है। तो इसीलिए सूत गोस्वामी अपने आप को शिष्य के रूप में दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरे गुरु जी की दया से भरे ऊपर आ जाए, मैं अधिकारी हूं। शिष्य का गुरु जी का दया को पाने के लिए अधिकार है। जिस दिन उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया उसी दिन अधिकार प्राप्त कर लिया, आई हैव राइट, मैं केस करके लगूंगा ठोकर, शिष्य हूं कैसे नहीं देगा, आप कृपा करने के लिए कंपल्सरी बाध्य है, मेरा हक है आपकी कृपा के ऊपर। यही तो संबंध है गुरु और शिष्य का, गुरु का कृपा को शिष्य प्राप्त करने का अधिकार है, सब्यस्त उसका राइट है। तो शुद्ध गुस्सा में राइट हूं, मेरा मेरा हक है, तो मुझे कृपा करना चाहिए, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। एक श्लोक से मन नहीं भरा गुरु जी की वंदना में, और एक श्लोक गुरु वंदना में करते हैं। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतिति तिरसितांत बंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम त्यं व्यास सूनु उपयामी गुरु मुनीनाम। वही व्यास सूनु, वही व्यास के सूनु मतलब व्यास पुत्र गुरु, सारे मुनियों के गुरु जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं, मेरे गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। जह यह भी श्लोक आरंभ करते जा मतलब जो मेरे गुरु जी जो कैसे हैं, यह स्व अनुभव अखिल, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम, अखिल श्रुति सार, हर प्रकार के श्रुति स्मृति पुराण आदि का सार सारभूत। क्या सार है? श्री भागवती सार है, अखिल वेद श्रुति पुराण का सार सार समुद्रतम, ये भागवत है। जो मेरे गुरु जी समस्त वैदिक वाङ्मय का समस्त श्रुति सार का अखिल श्रुति का सारांश को भागवत के रूप में स्वयं अध्ययन किए थे, ग्रहण किए थे, वही श्रुति सार में एकम, एक शास्त्र है जो समस्त श्रुति के सार है, वो एक शास्त्र कौन है? भागवत, और कोई इसके समान नहीं है। श्रुति के सार केवल ही है, श्रुति सार में एकम, और उनको उन्होंने स्व अनुभव या स्वानुभाव आपने अनुभव किए, उन्होंने कैसे अनुभव किए, जैसे मैंने पहले बताया था व्यास जी को नारद जी ने डांटे तो अनुभव नहीं किया, बोल दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि मेरे गुरु जी ऐसे नहीं है, मेरे गुरु जी तो अनुभवी हैं। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम, स्व अनुभव, जिस श्रुतियों का अखिल श्रुति का सार रूप एक शास्त्र भागवत को, उसको अनुभव किए, कैसे अनुभव किए? ऐसी घटना है कि जैसे आप सुने जन्म होते ही बाहर निकल पड़े जंगल में चले गए, तो जन्म से पहले वहां सिद्ध पुरुष विरक्त महापुरुष थे, ब्रह्मज्ञ थे, तो कोई आसक्ति नहीं था, माता पिता शरीर पुत्र कोई देहाभिमान से बिल्कुल परे थे, जन्म से ही ब्रह्मासक्त थे, इतने विरक्त पुरुष थे, जंगल में चले गए थे, जंगल में जाकर के कोई कपड़ा लता नहीं पहनते थे, बिल्कुल भगवत ध्यान में रहते थे, घूमते थे जंगल में। तो व्यासदेव जी ने आपने कंप्लीट मैच्योर अवस्था परिपक्व अवस्था में समाधि स्तर में भगवत दर्शन करके भागवत को लिखे थे। लिखने के बाद उनका अनेक शिष्य थे, वैश्यम्पायन जैमिनी पहल आदि अनेक शिष्य थे, जो एक से एजुकेटेड थे, सामर्थ्य शिष्य थे, लेकिन किसी को उन्होंने नहीं समझे ये पढ़ने के लायक नहीं, ये शास्त्र को एक एक कारिका पढ़ते हैं ठीक है, इसी भागवत शास्त्र को पढ़ने का उनका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत शास्त्र का पढ़ने का अधिकारी वो है, क्योंकि परमहंस संहिता है, जो स्वयं परमहंस है, महाविरक्त निरासक्त पुरुष हो, वही केवल भागवत को पढ़ सकता है। तो ऐसे पुरुष कौन फिट कैंडिडेट मिलेगा जिसमें पढ़ाऊंगा? इसलिए लिख करके किसी को दें, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, बैठे थे वेट कर रहे थे कोई कैंडिडेट आएगा, जब उनका लड़का कहने बोले मेरा बेटा एक ऐसे सही कैंडिडेट था जो इस शास्त्र के वास्तविक अधिकारी था, लेकिन ये तो चला गया, दुख में पढ़ के बैठ के थे, मेरे बेटा कब आएगा क्या? इस शास्त्र को तो अगर पढ़ने लायक कोई एक पुत्र हो तो वही है, लेकिन वो तो जंगल में चला गया। किसको मैं दूं, किसको पढ़ाऊं, इतने सामर्थ्य लगा करके उनको लिखा रचना किया, लेकिन किसको दूं? दुख से अब क्या कर रहे थे, भगवत कातर प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे जो उनसे पढ़ते थे, कई कई वेद विभाग से पढ़ते थे, तो आशा उनका था, तो उन्होंने उनके शिष्यों को एक श्लोक सिखाए, बोले आप जो जंगल में जाते हैं समझा लाने के लिए, ये श्लोक को कंठ कर लो, याद कर लो, जाकर के उनको जंगल में बोलते रहना, जब संविधा संग्रह आदि करते हैं श्लोक को बोलते रहना, जंगल में तो बेटा है, शायद इस श्लोक को सुनकर के अनुभव गम्य हो जाएगा तो शायद आए। तो एक श्लोक उनको सिखाए थे उनका शिष्य लोग जो जंगल में जाते थे पुष्प चुनने के लिए, फल लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, तो एक श्लोक याद कर लिए थे, उसको जाकर गाते थे जंगल में। ये श्लोक क्या था मालूम है? बरहा पीड़ं नटवर बपु कर्णया कर्णिकारं बिभ्रत बासात कनक कपीशं वैजयन्ती च मालां रंध्रान वेणु राधर सुधया पूरयन गोपबिंदे वृंदारण्ये स्वपद रमणे प्राविशद गीत कीर्ति वृंदारण्ये स्वपद रमणे प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदारूपी अरण्य में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय नाचते हुए गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं, कौन प्रवेश करते हैं? ना बरहा पीड़म नट बर बपु, बरहा मतलब मयूर पूछ, जिनके मथा में शिष्य में शिखा में बरहा पीड़म मयूर पूछ सुभाहित है, ऐसे बरहा पीड़म और कैसे ना नटवर नृत्य थाणी में नाचते नाचते आते हैं, नाचते नाचते आते हैं मयूर पुच्छ को लगाते हुए। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो हो कर्णिकारम, कान में कनेर के फूल खोसे हुए हैं, जंगल में घूमते रहते ना तो बन फूल माला, जंगल में जो फूल मिला वही अहंकार है, तो कनेर के फूल चुन करके कान में खोस दिए हैं। कर्णयो हो कर्णिकारम, एक कन्याकर को कर्णयोह दो कान के, बोले कभी इस कान में लगाते हैं कोई इस कान में लगाते हैं, एक फूल ला करके कर्णयोह कर्णिकारम, और क्या न बिभ्रत वासात, जो चमकीले अरुण वसन पहने हुए है वो चमक रहा है सोने जैसा, बिभ्रत वासात कनक कपिशम सोने जैसा चमक रहा है, कनक कपिशम वैजयंती च माला, एक माला पहने हुए है वैजयंती माला, वैजयंती माला कहते हैं पांच फूलों के द्वारा जो माला बनी हुई है जो घुटने नीचे तक गला से पड़े हुए हैं, ऐसे वैजयंती माला पहने हुए हैं, नृत्य थाणी में मयूर पूछ लगाते हुए ऐसे चमकीला सोने जैसा वस्त्र पहने हुए, विभ्रत वासाद कनक कपिशम वैजयंती च माला, और क्या नरंध्रान वेणुर, एक बांसुरी को हाथ में पकड़े हुए हैं, रंध्रान वेणु अधर सुधया, उस वेणु के छिद्र में अधरा अमृत को भर रहे हैं, मतलब वेणु को अधर अमृत पिला रहे हैं, रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरेयन गोप वृंदे, यहां तो बांस के छिद्र में सुधा डालते हैं लेकिन वो कहां पहुंचता है, वो सुनते कौन उनको, ब्रज के गोप गोपियां वो सुन रहे हैं, यही से कनेक्शन है, यही से जाता है तो वहां सुनाई पड़ता है, पूरयन गोप वृंदे, बांस के छिद्र में बांसुर के छिद्र में जाता है लेकिन वहां जाके निकलता है, जब यहां निकलता है तो उनको पता चल जाता है अब आने का समय है, गोधली वेला आ गया, सारे घर के काम दाम छोड़ करके कोई खिड़की में कोई छत के ऊपर कोई कबाट में कोई इधर सब आंख टेक करके सब देखते देखना चाहते, और जो देख रहे हैं यही शोभा दिखाई पड़ता रहे। भगवान कृष्णचंद्र के ब्रज प्रवेश का, गायों को ग्वालों के साथ में वृंदावन में प्रवेश के समय जो शोभा, उसको वर्णन करता है। कौन वर्णन करता है? इति वेणुरवम। वर्णन कौन करता है? श्री वेणु बांसुरी ही वर्णन करती है, और कौन बोलेगा? वही देखता है, वही वर्णन करता है। तो इस श्लोक को वो गाते थे। जब गाते थे तो सुखदेव जी जंगल में घूमते 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 एक दिन उनका कान में पड़ा इस श्लोक, सुने, तुरंत ढंग से सुने। वो तो महाविद्वान थे, तुरंत समझ गए। समझ करके आकर बोले, आप लोग के श्लोक कहाँ से सीखा? तो बोले, ना हमारे गुरुजी ने रचना किया, गुरुजी ने बताया। आप कौन आपके गुरुजी है? ना व्यास मुनि, बादरायण हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने हमको एक श्लोक सिखाए, हम गाए। अच्छा, अरे एक श्लोक क्या, ऐसे अनेक श्लोक उनके पास है, ऐसे ऐसे अनेक अनेक श्लोक है ऐसा। तो केवल भगवान के अभूतपूर्व सौंदर्य के बारे में सुन करके जो महाविरक्त चुड़ामणि सुखदेव जी आकर्षित हो गए, वापस घर में आए। जो प्रव्रज्ञा लेकर जन्म के समय चले गए थे, घर त्याग कर, गृह त्याग करके आज घर में वापस आ गए, व्रत त्याग कर घर में वापस आ गए। सुनकर वापस आ गए, केवल भगवान की सुंदरता के वर्णन खींच लिया, घर में आए और इतने बड़ी 18,000 श्लोक विशिष्ट, 12 स्कंद 335 अध्याय विशिष्ट ये पूरी भागवत संहिता को उन्होंने अध्ययन के पाठ किया, एक श्लोक सुनकर के आगे पाठ किया, मतलब उसको अनुभव किए उन्होंने। एक सुनकर के इतने आकर्षित हुए, अनुभव कर लिए, तो पूरा आगे बढ़े। तो इसलिए होते यंग स्वानुभाव, जो स्वयं अनुभव किए हैं, जिनको चस्का लगा था, टेस्ट किए जो उन्होंने, जिनने टेस्ट करके पढ़ के आए हैं, वह स्वानुभावम श्रुति सारम अखिल श्रुति सारम एकम, अनुभव से उनका। और क्या है? आध्यात्म दीप अतिथि तीर्षितांग तमंधम। ये जो श्रुति सारम एक सार सार पुराण भागवत, ये क्या है? ना आध्यात्म के प्रदीप है। तीर्षितांग तमंधम, तम और अंधकार, तमसाचन अंधकार, ये जो घोर संसार है, जो घोर अंधकार से तुलना किया गया है। कहीं कहीं जगह में तो केवल अंधकार के नहीं, अंधकुआ के साथ तुलना किया गया। प्रहलाद महाराज ने उसको अंधकूपम, खाली अंधकार नहीं बोलते, अंधे कुआं है, ढंका हुआ कुआं की तरह तुलना किया। इससे बचने के लिए लाइट चाहिए ना, तभी जमाने तो बिजली था नहीं, तो लाइट होने से देखा पड़ जाएगा, अरे कुआं है, गड्ढा है, इधर नहीं जाऊं। तो लाइट कहां है? घोर अंधकार से लाइट के रूप में कौन है? ये भागवत पुराण। इसे बोलते आध्यात्म प्रदीप। इस अध्यात्म रूप प्रज्वलित आलोक प्रदीप की शिखा को लेकर के इस घोर तमस युक्त संसार रूपी अंधकार को पार कर जाएंगे। अध्यात्म दीप तस्सितं तमन्धम। संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम। इस संसारी जन, हम जैसे बद्ध कलिहत संसारी जन के ऊपर करुणा करने के लिए, बाकी कोई काम था नहीं, वो तो भागवत पढ़ने के बाद वापस फिर जंगल में चले गए थे, जहां घूमते थे अपनी मस्ती में, भगवत लीला में इतने रम गए थे, उनको कोई पड़ी नहीं था। कभी कभी कोई जाते थे, मन करता था कुछ खाने पीने के, खाते थे कुछ नहीं थे, कभी कभी कुछ मन करता था तो कोई गांव में चले जाते थे, जब भूख लगता थोड़ा खाने के लिए मन कर जाते थे, अन्न नहीं खाते थे। जिसका घर में गाय होते हैं, गाय बछड़ा देखते हैं, उनके घर में जाते थे, तो बोलते नहीं थे कि उनके मुंह से कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था, बिल्कुल नंग धड़ंग थे, 16 साल के जैसे उम्र दिखाई पड़ता था उनका शरीर। इस अवस्था में जाते थे किसी के घर में, जिसका घर के सामने गौशाला देखते, मतलब गाय बछड़ा हो, तुलसी के पौधे हो, वहीं चले जाते थे। जाकर के खड़े होते थे, घर वाले देखते थे, अरे ये सुंदर पुरुष कैसे आ गए, ये कोई जोगी होगा शायद, तो इशारा करते थे, ऐसे हाथ करते थे, गाय को दिखाते थे, थोड़ा दूध पान करना चाहते, कोई बर्तन गिलास वास नहीं था उनके पास, ऐसे हाथ करके दिखा देते, तो गृह मालिक आकर के दूध निकालते थे, जितने समय गाय को दुहने में इतने समय खड़े होते थे, एक मिनट ज्यादा नहीं ठहरेंगे, ठीक इतने टाइम तक रहेंगे, गोदहन समय मात्रेण, गाय दुहने के लिए जितना टाइम इससे समय खड़े रहेंगे, जब इतने समय में ही वही घर का संपूर्ण परिवार को उद्धार कर देंगे, उनके उपस्थिति मात्र से, उनके उपस्थिति मात्र से ही संपूर्ण परिवार उस क्षेत्र का परम कल्याण हो जाएगा। इतने बड़े महापुरुष थे, क्योंकि वो जो खड़े होते 24 घंटे उनका शरीर से नख से सिर तक भगवत चिंतन चलता था, पूरा करंट हाई वोल्टेज करंट प्रवाह होता था, जहां खड़े हो जाएंगे सरचार्ज्ड हो जाएगा वो एरिया, जो इनके लिए दूध धो करके देगा तो उनका तो परम कल्याण हो जाता था। लेकिन वो चाहते केवल उन्हीं के घर में, किसका घर में, जो गो सेवक है, जिनके घर में गाय होगा उन्हीं के घर में जाएंगे, जिनका घर में गाय नहीं कुत्ता है उनके घर में नहीं जाएंगे। हमारे कुत्ता पार्किंग है, गाड़ी कार पार्किंग, गाय पार्किंग तो खत्म, आगे के पीछे नहीं होता। लेकिन यही से सुख मुनि जैसे महापुरुष तो उन्हीं के घर में जाएंगे जिनके घर में गए बछड़े, गाँव वो होंगे बछड़े, और इतने समय तक रहेंगे जब वो धर्म के आ जाए, इतने समय में ये उनको उद्धार करके चले जाएंगे। तो गोदहन मात्र समय तक जाकर तो कभी कभी जाते थे इसे पीकर आते, कोई बातचीत नहीं करते थे, बातचीत करेंगे तो क्या, बिना बातचीत के जो उनको उद्धार हो जाता है, दर्शन मात्र में उपस्थिति मात्र में तो चले जाते थे। और कभी कभी गांव में आते थे तो गांव के जो बच्चे लोग को स्त्रियां देखते थे, इतने बड़ा लड़का नंगा घूमता है, तो उनको चिढ़ाते थे, पत्थर फेंकते थे, उनको बड़े तंग करते, लेकिन किसी के ऊपर खातिर नहीं, केयर नहीं, केयरलेस होते, वो तो दूसरे धुन में रहते थे ना, उनको उनसे कोई पड़ी नहीं, देह स्मृति से परे मैं शरीर हूं उसका भान ही नहीं था, भान ही नहीं रहता। यहां तक तो इसे कथा मैंने सुना हूं कि जब सुखदेव गोस्वामी जब घर से निकल करके 16 साल की जैसे अवस्था था, जब चले जाते थे जंगल में, एक ऐसी कथा आता है कि एक जगह पर जंगल में एक कुंड था, इस कुंड में कई किशोरी बालिकाएं स्नान करती थी, जंगल का निर्जन जंगल वन प्रदेश था, तो इसलिए सब किशोरी थे, केवल उनके ही ग्रुप था, तो इसलिए कोई लाज शर्म छोड़कर सब कपड़ा वपड़ा उतार करके वो स्नान करती थी, कोई नहीं थे, निर्जन वन प्रदेश था। तो सुखदेव गोस्वामी वही कुंड के किनारा होकर निकले, बिल्कुल नंगे थे, बिल्कुल किशोर अवस्था था, 16 साल के चमचमावत अवस्था, पूर्ण जौवन अवस्था में नंगे निकले इस रास्ता में, तो इस बालिकाओं ने देखे, उनके मन में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया, बिल्कुल खतरे नहीं किए, अपने शान करते हुए अपने निकल गए। जब व्यास जी आए, परम वृद्ध पक्के दाढ़ी, जैसे देखे दूर से, दौड़ कर आकर अपना अपना कपड़ा पहन लिया। लोग कहते हैं क्यों ऐसा किया, कभी कभी आप लोग भी अनुभव करते होंगे, हम सभी भी अनुभव करते हैं, आप लोग बाथरूम के अंदर जाकर के कबाड़ बंद कर देते हैं, उसके अंदर कपड़ा होता है तो कोई फिर भय नहीं, शर्म नहीं करते, अगर बाथरूम में कभी के चूहा निकल आया, कोई चुचंदर निकला तो शर्म होता है कि डर के मेरे कपड़ा पहन लेते क्या, कोई शर्म नहीं होता, क्यों आप जानते हैं उनके आपके लास्ट शर्म नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति आ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए, सब नहीं शर्म करे, मनुष्य आ जाए तो तुरंत शंका करेगी। तो इसी प्रकार वो जो सुखदेव गोस्वामी मनुष्य रूप था, लेकिन पशु पक्षी से परामर्श इतने उनके अंदर निर्माय थे, वो उनको समझते थे ये तो कुछ नहीं उसका अंदर, उनको क्या शर्म करने का, उनके अंदर कुछ है ही नहीं, क्या शर्म करे, तो इसी प्रकार था। लेकिन व्यास वृद्ध उनको शर्म करते थे, मां सकते थे, तो ऐसे पुरुष थे सुखदेव, तो ऐसे घूमते थे, ऐसे महापुरुष को क्या जरूरत था आकर के बोलना, इतने बड़ी भरी सभा में राजा के सामने खड़ा होकर बोलना, जो उसके घर में नहीं जाते थे, किस लिए आए ना, केवल एक गुण उनको प्रेरित किया, बाध्य किया आकर बोलने के लिए, गुण क्या था, करुणा, करुणा मूर्ति, जैसे कृपा सिक्त हो गए, अरे राजा विकल होकर पूछ रहा, कोई उनको मदद नहीं कर रहा है, इसलिए संसारिणाम करुणा करुणामूर्ति होकर के, कृपा के सागर कृपा मूर्ति होकर के बोल डाले आकर के, लो बोल देता हूं, ऐसे हाई डोज लगाए, 7 दिन में परीक्षित को उद्धार कर दिए परम, ऐसे भागवत है, ऐसे आध्यात्म दीप है। तो इसी प्रकार गुरु सूत गोस्वामी को मैं गुरु मुनि नाम में उसको प्रणाम करता हूँ। ऐसे दो श्लोक से गुरु वंदना किए, गुरु वंदना करके उत्तर देने के लिए शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब भागवत को बोलना शुरू करते हैं, गुरु वंदना कर लिए। भागवत बोलने से पहले भागवत की थोड़ा सा सम्मान पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले बोलते हैं नारायणं नमस्कृत्यं, नमस्कार करते हैं किसको, ना नारायण। नारायण मतलब नर नारायण ऋषि। सबसे पहले आदि भागवत के वक्ता वही नारायण ऋषि हैं, वहीं से भागवत प्रचार शुरू हुआ, भागवत शुरुआत वहीं से हुआ। तो इसलिए इस भागवत के अधिष्ठाता श्री नारायण ऋषि हैं, इसलिए नारायण नमस्कृत्यं, इसलिए सबसे पहले अधिष्ठाता देव इस नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं। उसके बाद नारायण नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण के बाद फिर नरोत्तम मतलब पुरुषोत्तम कौन है, न भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, उनको प्रणाम करते। क्यों, क्योंकि इस भागवत के इस ग्रंथ के देवता है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं, उसके आदि प्रणेता नर नारायण ऋषि है इस ग्रंथ का, और इस ग्रंथ का देवता है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। नारायण नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, उसके बाद देवी सरस्वती, देवी सरस्वती उसके शक्ति है, इस ग्रंथ के शक्ति है देवी सरस्वती वांग्मयी देवी सरस्वती। फिर व्यास, व्यास है उसके ऋषि जिन्हें रचना किए, और गायत्री है उसके छंद, और प्रणव है उसका बीज ओंकार। तो इसी प्रकार संगो पंग इस शास्त्र को न्यास किए, न्यास करके प्रार्थना करने के बाद जयदान देना होता ना, तो जय लास्ट में आप जो कहते हैं फिर जय ध्वनि दिया जाता है, फिर जय ध्वनि देना पड़ेगा तब जाकर कंप्लीट होता है। जय ध्वनि दिए सबका, ततो जयम उदीरयेत, जयम मतलब जी उसको उदीरयेत मतलब उच्चारण की, उसको उच्चारण है किसको उच्चारण किया, जय को उच्चारण किए, जैसे अब अंत में जय हो करते हैं लास्ट में जय ध्वनि देते हैं ना, उदीरयेत उसको उच्चारण बोलते हैं। जय का मतलब तो जय ध्वनि है, उसका और एक मतलब है ये भागवत ग्रंथ का नाम भी जय है, जिस ग्रंथ के द्वारा इस संसार सागर को जय किया जाता है इस शास्त्र का नाम भी जय है। तो इसलिए इस शास्त्र को उच्चारण करना शुरू किए, ततो जयम उदीरयेत, तत मतलब उसके बाद में भागवत को उद्गार किए, जयम उदीरयेत मतलब संसार विजय ग्रंथ भागवत को बोलना शुरू किए, ततो जयम उदीरयेत। क्या बोलना शुरू किए, जय ध्वनि करने के बाद, पूरा मंगलाचरण करने के बाद, नमस्कार करने के बाद, मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमंगलम् यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। सबसे पहले मुनियों को साधुवाद देते हूं, साधु 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 क्या प्रश्न किए आपने, मुनयः साधु पृष्ठोऽहं क्या बढ़िया प्रश्न आपने पूछे, साधुवाद है आप लोग, साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमंगलम्, भवद मतलब आप लोग सब कोई स्वार्थ की बात नहीं करते, संपूर्ण लोक के मंगल के लिए आपने प्रश्न किए, भवद्भिः लोकमंगलम् यत् कृतः, क्योंकि आपने जो प्रश्न किए यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। सारे मुनि मंडल के प्रश्न था ना, क्या कैसे आत्मा प्रसन्न हो जाए, बोलते हैं आत्मा प्रसन्न होगा मैं कहूंगा कि आत्मा प्रसन्न होने का, आप जो पूछ दिए इसमें आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, आपके प्रश्न सुन करके मेरे आत्मा प्रसीदति, मैं बोलूंगा क्या, प्रश्न ही ऐसा है, प्रश्न ही ऐसा है कि आत्मा को प्रसन्न कर दे। कि प्रश्न कैसा है, न कृष्ण सम प्रश्न, प्रश्न कृष्ण विषय का था। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल में केवल प्रश्नोत्तर में जीता है ना, नहीं आप याद करो जिस दिन सुबह बेड से जब उठते हैं जगते हैं तुरंत उठ करके क्या करते हैं, टाइम देखते हैं ना, क्या टाइम हुआ? दैट इज नॉट क्वेश्चन, प्रश्न है ना, क्या टाइम हुआ? प्रश्न है। फिर पानी है ना? नहीं, पानी है तो गर्म है ना, ठंडा है? पूरा जीवन के हर पग पग में प्रश्नमय है। प्रश्न के बिना कोई जीवन जी नहीं सकते, हर चीज प्रश्न ही प्रश्न है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कचहरी, कहां भी जाओ, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रश्न जवाब सवाल चलता रहता है। लेकिन ये सारे प्रश्नोत्तर में हम बंधते मरते, कष्ट टेंशन दुख पृष्ठ चंचलता घरे पड़ते निकलते हैं। ये सब प्रश्न ऐसे निरस है। एक ही प्रश्न है मंगलकारी सरस प्रश्न, जब प्रश्न कृष्ण के विषय से किया जाए। अगर ये सारे प्रश्न को छोड़ करके केवल कृष्ण के बारे में जवाब सवाल करें, प्रश्न करें, तो हम प्रसन्न हो जाएं, सभी प्रसन्न हो जाएं। दसम स्कंद में स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्नम पुनाति त्रिभुवनम, तीन जन को पवित्र कर देता है। किस किस को? न पृच्छकं, जो पूछता है वो पवित्र हो जाता है। व्रत्रारम, जो बोलता है वो पवित्र हो जाता है। श्रोत्रारम, जो सुनते हैं वो पवित्र हो जाता है। तीन कोटि के लोग को पवित्र कर देता है केवल प्रश्न। कैसा प्रश्न? वासुदेव प्रश्न। वासुदेव के कथा का प्रश्न ही तीन प्रकार के लोगों को उद्धार कर देता है। जो पूछता है, जो बोलता है, जो सुनता है, तीनों उद्धार हो जाता है। ऐसे वासुदेव कथा प्रश्न। तो आपने जो छह प्रश्न किए, सारे तो कृष्ण सम प्रश्न है, कृष्ण के बारे में प्रश्न है। तो प्रश्न ही आपका ऐसा है सारे जगत को कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है, सबको प्रसन्न करने वाला है। आपका प्रश्न ही ऐसा है, और तो उत्तर भी आत्मा प्रसिद्धति होगा ही। तो प्रश्न की सुन करके उनको साधुवाद देने के बाद कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्म, प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रथम दो प्रश्न का एक ही बार में उत्तर देते हैं। सवे पुंसांग परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे, अहेतु की अप्रतिहता य आत्मा सुप्रसीदति। प्रश्न था कैसे आत्मा सुप्रसन्न हो जाए, सीधा सीधा उत्तर देते हैं, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाए, ये धर्म ये कर्म क्या है? ना सवे पुंसा, सभी पुरुषों के, सभी प्राणियों के यही परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्या है? ना यतो भक्तिर अधोख्यजे, अधोख्यज भगवान कृष्ण के भक्ति ही एकमात्र उपाय, एकमात्र परम चरम श्रेष्ठ धर्म है, जिसके द्वारा सकल जनमानस का, सकल जीव का, प्राणी मात्र का आत्मा सुप्रसन्न हो जाएगा। ये आत्मा सुप्रसन्न भगवान की भक्ति ही ऐसा। लेकिन ये भक्ति का दो विशेषण देते हैं, बोलते हैं सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे, उसको अहेतु की अप्रतिहता। अगर वो भगवान कृष्ण के भक्ति ये दो लक्षण वाली हो, तब आत्मा प्रसिद्धति, तब आत्मा प्रसन्न होगा। इसमें गड़बड़ी है, भक्ति हम करते हैं, हम तो प्रसन्न हो नहीं रहे, क्योंकि ये दो लक्षण होना चाहिए। ये दो लक्षण क्या? अहेतु की और अप्रतिहता। मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसे होना चाहिए जिसका कोई हेतु ही ना हो, कोई वजह ही ना हो। मैं इसके लिए करूंगा, इसके लिए करूंगा, तो इसके लिए करूंगा तो भगवान के लिए कैसे होगा? भक्ति तो भगवान के लिए होना चाहिए। तो आप और कोई चीज के लिए करता है तो फिर कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं, केवल भगवान के लिए होना चाहिए, तब जाकर के प्रसन्न। हम तो सब घर में, प्राय घर घर में सब गौर नित्य विग्रह, राधा कृष्ण विग्रह आप लोग सुरखे हैं, मैं देखता हूँ किस किस घर में करते हैं, और भोग भी लगाते हैं, आरती भी करते हैं, तो कैसा भक्ति है? उनको कहा गया है, भक्ति आचार्य बोलते हैं, वो स्टाम्प मरा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति। माने भक्ति तो नहीं, भक्ति के आरोप लगा दो, आरोप समझते ना, जैसे आप चोरी नहीं किए, यहाँ भी चोरी किए करके आरोप लगा दिया, अरे छोटा मोटा आरोप मुझे क्यों लगाते? जैसे भक्ति तो नहीं, भक्ति का आरोप लगाते हैं उसके ऊपर, नहीं भक्ति है, अरे भक्ति है नहीं बिल्कुल, लेकिन आप आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं भक्ति का, उसके ऊपर स्टाम्प लगाते हैं। हम लोग का भक्ति ऐसा है, आरोप सिद्धा, भक्ति के आरोप मात्र है, लेकिन भक्ति है नहीं सचमुच। क्यों? अब जैसे ठंडा पड़ा है, ओह थोड़ा ठंड पड़ रहा है, ऐसा करो गरम गरम पकौड़ा बनाओ। किसके लिए चाहिए बोलिए, किसको चाहिए गरम गरम पकौड़ा? हमको चाहिए ना। अब भोग लगाओ, ए तुलसीपत्ता लगा, ताली मारो ना, फिर क्या लगा नहीं भोग, चलाओ हम तो उठा कर दिए। किसके लिए, कैसे प्रसन्न होंगे? जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? आपने लिए करते हैं, और नाम चढ़ा देते हैं भक्ति का, इसीलिए आरोप सिद्धा कहते हैं भक्ति भी थोड़ी है। अरे तू उनका करता है, उनके लिए करो ना, वो क्या चाहते हैं? उनको तो सोचा ना तुझे चाहिए तू करता है तेरे लिए, और उनका नाम क्यों लेता है? हम भोग लगाया ना, भोग लगाया। आप क्या करें, जबरदस्ती टांप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, है ना? जैसे आप दोष नहीं किया, आपको दोषी कोई देता है, दोष का आरोप लगाता है, तो इसी प्रकार में भक्ति का आरोप लगा देते हैं हम लोग, हमारा भक्ति ऐसा ही है। तो बोलते हैं ऐसे कैसे आपका कल्याण होगा? तो इसलिए बोलते हैं कि भक्ति ऐसा होना चाहिए कृष्ण की, जिसका कोई हेतु ही ना हो, वजह न हो, केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। हाँ, और किसी के लिए नहीं, उनके लिए होना चाहिए, और किसी का विचार पसंद नहीं होना चाहिए। हेतु की बोलेंगे, भक्ति का तो हेतु होता है, क्या हेतु? ना कोई पुण्य कर्म किया होगा तब भक्ति कर पाता है, कोई संग किया होगा, कोई ये किया होगा, कोई कई प्रकार बोलते ना, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति का कोई हेतु हो ही नहीं सकता। बाकी सारे प्रकार के क्रिया जितना है सबका हेतु होता है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, लेकिन भक्ति का कोई हेतु नहीं है। कोई भक्ति करते हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। अहेतु की बोलते हैं कि हेतु नहीं है, भक्ति तो भक्त संघ से होता है। बोले जो भक्तों के संघ है ना, साधु संघ से भक्ति की बात करते हैं, साधु संघ ही भक्ति है, क्योंकि भक्ति का आचार्य जो भक्ति के सोपान गणना करते हैं, शुरुआत करते हैं क्या से, श्रद्धा, उसके बाद में आता है साधु संघ। तो बोलते हैं बाद मतलब भक्ति के क्रिया के अंदर ही आ गया ना, तो भक्ति है, तो भक्ति के कारण भक्ति है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भक्ति अहेतु की है, कोई हेतु नहीं रहना चाहिए, वजह नहीं रहना चाहिए, और क्या, अप्रतिहता, ऐसे भक्ति का कोई बाधा विघ्न किसी प्रकार से रुकावट हो ही नहीं सकता, कोई भी किसी प्रकार की प्रतिहत उसे रोक नहीं सकता, अप्रतिहता। मत कथा श्रवण मात्रेण, जो उत्तम भक्ति का लक्षण बताते हैं कपिलदेव जी, बोलते हैं कि मेरे कथा सुनने के मात्र से मन इतने उद्वेग हो जाता है जैसे गंगा की धारा हिमालय से निकल करके अबाध गति से समुद्र की ओर दौड़ता है, ठीक इसी प्रकार अबाध गति से कृष्ण की ओर दौड़ेगा मन की प्रवाह। बोलते हैं ये है अप्रतिहता, कोई रुके नहीं रुकेगा। बड़े बड़े डैम करके गंगा जी को रुकना चाहते हैं, लेकिन फिर ऊपर से साइड करके निकल जाती है, निकल जाती है ना, कोई रुक नहीं सकता। अविच्छिन्न तेल धारावत, कोई विच्छेद नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता। एक छोटा बालक था प्रहलाद, पूरा राज्य उनके परिवार पिता समेत उनको प्रतिरोध करना चाहे, कर पाए? सब हार गए। अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं कर सकता, यह भक्ति का दूसरे लक्षण। मतलब ये बात कह करके ये समझाते हैं कि भक्ति दो प्रकार के होता है, कृष्ण के भक्ति का दो विभाग है। क्या दो विभाग है? एक है साधन भक्ति और एक प्रेम भक्ति। ये श्लोक में यही उद्घोष करते हैं, भक्ति के दो विभाग, एक साधन भक्ति और प्रेम भक्ति। जो पहले लक्षण है ये साधन भक्ति का, दूसरे भक्ति प्रेम भक्ति का। कैसे प्रेम भक्ति को ना, प्रेम भक्ति का जो लक्षण भक्ति संस्कृत पढ़े ना, प्रेम भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम भक्ति उसको कहते हैं जो साधन भक्ति के बाद ही पैदा होता है, साधन भक्ति जिसका कारण होगा वो प्रेम भक्ति है, साधन के बाद जो प्रकट होता है वो है प्रेम। साध्य, साधन का साध्य है प्रेम, हम जो साधन करते हैं उसका साध्य है, जो नौ सोपान है ना, आठ सोपान, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, लास्ट क्या है? प्रेम। तो प्रेम ये सिद्धि अवस्था है साध्य का, साधन का। ये जो सब क्रिया आदि साधन है, तो ये साधन भक्ति करके जो सिद्ध अवस्था है वो प्रेम भक्ति, वो अहेतु की। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति करना पड़ेगा, तब जा करके हो। ये दो प्रकार के भक्ति किसका करें ना, अधोक्ष भगवान कृष्ण का करें, और किसी का नहीं, केवल भगवान कृष्ण का भजन साधन शुरू कर दो। प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम को लक्ष्य करके करो, इसका सिद्धि प्रेम है। इसलिए दो लक्षण की बात करें, दो प्रकार भक्ति करने के लिए कहा गया। अभी आगे कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अदहेतुकम अहेतुकम। इसी हेतु के बिना दोनों, ज्ञान और वैराग्य, बोले भक्ति होगा कैसे, ज्ञान वैराग्य भी तो होना चाहिए, जानकर ज्ञान भी होना चाहिए वैराग्य, बोले कोई जरूरत नहीं उसके लिए, कोई एक्स्ट्रा उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल भगवान कृष्ण वासुदेव का भक्ति अगर करो, साधना करो, तो ऑटोमेटिक प्रेम तो आएगा ही, और उसके साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी आएगा। जनयति आशु, जल्दी ही प्रकट होता है, मतलब ज्ञान और वैराग्य का जननी भक्ति ही है। आप बोलेंगे ज्ञान होगा तब भक्ति होगा, वैराग्य होगा तब, बोलते नहीं 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 नहीं, भक्ति होगा तब वो दोनों आएंगे, मां होगा तब तो बेटा होगा। तो वास्तव तो भक्ति करो, ज्ञान वैराग्य, कैसे ज्ञान वैराग्य आ जाएगा जल्दी, तो समझाते हैं। वासुदेव भक्त योगी प्रयोजित, प्रयोजित शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण योजित, जुड़ करके, मतलब अच्छे तरह से भगवान की प्रयोजन, प्रेम को प्रयोजन मान करके जो भक्ति साधन किया जाता है, वासुदेव के प्रसन्नता ही जिसका, जिस भक्ति का प्रयोजन है, प्रयोजन समझते ना, केवल भगवत प्रसन्नता वासुदेव प्रसिद्धति, वासुदेव के प्रसन्नता ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे जो क्रिया वो है भक्ति। समझ में आया ना, क्या केवल वासुदेव की प्रसन्नता ही जिसका प्रयोजन है, जिस क्रिया का, वो क्रिया को भक्ति कहा जाएगा, और किसी का प्रसन्नता नहीं, वासुदेव प्रसन्नता। प्रयोजित, प्रयोजित प्रकृष्ट रूपण योजित, जुड़ करके, क्या जुड़ करके, मतलब उनके साथ ऐसे जुड़ो, किस प्रकार जुड़ो ना, चार प्रकार से जुड़ो, क्या ना, दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य, इस चार प्रकार से जुड़ करके जो साधन भजन करा जाए वो प्रयोजित, वो प्रायोजित भक्ति। मुझे किसी ने, कोई प्रभु जी ने बोलते, थोड़ा आप उस दिन रसिक भक्त का कथा कहते, रसिक भक्त कौन है, कैसे पहचानेंगे, रस अनेक प्रकार होता है, जिसमें मुख्य है पांच प्रकार, शांत दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य। इसमें से शांत रस को भी माना नहीं गया, जो मुख्यतः रस है, संबंध करता है, वो ये चार रस है, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य। यही चार प्रकार रस से जो उत्प्रेत है, जो साधना करते हैं वही रसिक है, बाकी कोई रसिक नहीं है। बाकी सब जो रसिक है सेंटिमेंटल है, भावुकता है, कोरा पागलपन है, वो रसिक नहीं है। वास्तविक रसिक कौन है, जो इस चार संबंध से भगवान से संबंधित है, इस संबंध से संबंध हो करके जो भजन साधन क्रिया मुद्रा करते हैं वो रसिक भक्त जाना है, उनके लिए कहा ना। कोई सुने वो रो पड़े, नाच पड़े, रो लुटपुट हो गए, बोलते हैं ये तो हृदय दुर्बल्य है, ये उनका दुर्बलता है, जो भक्ति में बाधक है, ये भावुकता है, सेंटिमेंट है ना, ये नहीं। बस तो इस प्रकार वासुदेव प्रसिद्धति भक्ति योग प्रयोजित, ये जो भक्ति योग इसी प्रकार से, इस चार प्रकार संबंध से प्रयोजित हो करके वासुदेव प्रसन्नता के लिए हेतु की जो करता है, तो बहुत जल्दी ही ज्ञान और वैराग्य उनके अंदर आ जाएगा ना। कैसे ज्ञान वैराग्य आ जाएगा भक्ति करने से, एक उदाहरण समझिए, आपको भूख लग रहा है, काल एकादशी किए थे ना, फास्टिंग पूरा निर्जला किए थे, खाए नहीं थे, आज पारण करना था, कुछ मिल नहीं रहा है, 10 बज के अब तक बहुत भूख लग रहा है, कल से नहीं खाए तो मतलब जो भूखी इसे एक दिन जो नहीं खाए जो भूखी व्यक्ति का शरीर भी दुर्बल है ना, नहीं थोड़ा खाने के लिए मन भी चाहता है और शक्ति भी घट गया है। तुष्टि पुष्टि खिदापाई, तीन कार्य उसको चाहिए। मन के तुष्टि होना चाहिए, शरीर को पुष्टि होना चाहिए और पेट को खिदा निवारित होना चाहिए, है ना, तीन काम चाहते हैं अपने। तो आप केवल भोजन करने लगे, बढ़िया से अन्न भोजन किए लगे, एक प्रसाद केवल खाए, तो आपके तीन काम एक साथ में हो जाएगा, एक एक ग्रास में ये तीनों काम होते चला जाएगा, तुष्टि पुष्टि और खिदा निवृत्ति, ये तीनों एक एक ग्रास में होता जाएगा ना। नहीं उसके लिए क्यों अलग प्रयास करना, तुष्टि के लिए अलग, पुष्टि के लिए अलग, खिदा निवृत्ति के अलग, इसे करना नहीं पड़ेगा, अपने आप से हो जाएगा। जब आप कभी खाते हैं ऐसा, कभी कोई आपने सभी तक डेली तक कम से दो तीन बार तक खाते ही होंगे, कभी खाते समय पूछते कभी साइड में बोलते प्रभु जी मेरा पेट भरा ना और थोड़ा खाऊं, और खाऊं ना ना खाऊं, किसी पूछते कभी भूल में भी किसी को पूछे आपने कभी नहीं, अपने आप को खुद ना बस किसी को बिना पूछे अपने आप को पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार कोई टेस्ट अपने आप को पता चल जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है, मानसिक तुष्टि, भगवान कैसे हैं, उनके रस हैं, उनके लीला, उनके परिकर, वो है भगवत संबंधी ज्ञान, अपने आप प्राप्त हो जाएगा भजन करने से। निवृत्ति संसार से विकार, निवृत्ति वो नहीं चाहिए, नहीं बस निरस हो जाएंगे, संसार से रस निवृत्त होंगे, भगवान से प्रवृत्ति हो जाएगा और मन उपलब्धि होगा, प्रसन्न होगा, पुष्टि होगा। तुष्टि पुष्टि खिदान में तीन काम एक साथ में होगा, ठीक इसी प्रकार केवल भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही आ जाएगा, संसार से वैराग्य और भगवत ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई अलग प्रयास करना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की भगवत की भक्ति है। उसके बाद कहते हैं धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक से न कथा स्वय न उत्पादय रतिजदिम श्रम एव ही केवलम। एक विशेष बात इधर कहते हैं कि जितने सारे धर्म आचरण करने वाले हैं, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म आदि आदि, ये सारे धर्माचारी ठीक ठीक से स्व अनुष्ठित से अच्छी तरह से अपने अपने आश्रम और वर्ण में अनुष्ठित हो करके अपने धर्म को ठीक ठीक से पालन करते हैं, भले इस धर्म को ठीक ठीक से पालन करें, धर्म स्व अनिष्ठित पुंसा पालन करने के बाद उनके जब विश्वेक्षण भगवान के कथा सुनने के प्रति लालच नहीं हुआ, चाह नहीं उत्पन्न हुआ, कथा सुनने के लिए रति ना उत्पादयत, उनका मन में एक चाह एक रति उत्पन्न नहीं होता है, तो इतने सारे धर्म पालन करते हैं बड़े कठोर, तो क्या बोले श्रम एव ही केवलम। जो थोड़े बहुत संस्कृत जानते हैं वो जानते होंगे एव शब्द, ही शब्द और केवल शब्द तीनों ही पर्यायवाची, एव मतलब निश्चय ही मतलब निश्चय ही, केवल मतलब केवल ही, तीनों एक ही बात है, तीन तीन बात क्यों लगा फिर तीन शब्द एक ही बात कह देते, इतने जोर देकर कहते हैं कि ये केवल कोरा श्रम ही है और कुछ नहीं है, ओनली यूजलेस लेबर। आपके मन से तो बहुत बढ़िया धर्म पालन करते हैं ना, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत काम करता हूं सुबह से शाम तक, कितने काम करती हूं, कितने काम करता हूं, सारे बेकार, भक्ति नहीं है। क्यों, ये मीटर डालकर देख लीजिए, हम सभी के लिए चेतावनी है, कभी कभी हमको थोड़ा बुखार होता है तो थर्मामीटर लिख देते हैं और 100 हुआ है, पता चल जाता है कितने टेम्परेचर। ठीक इसी प्रकार आप जो सब तथाकथित भक्तिमूलक कार्य क्रिया करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर मीटर डाल के देख लीजिए कि भक्ति है कि नहीं, कितना है, ये मीटर इधर बता गया। क्या मीटर है, मीटर ये है कि आपके अंदर कथा, भगवत कथा सुनने के लिए कितना चाह उत्पन्न हुआ है या नहीं। नहीं चलेगा, देखूंगा कल चला जाऊंगा, अभी चाह उत्पन्न नहीं मतलब भक्ति नहीं है, सारे अब जो क्रिया करते सर बेकार, कोरा श्रम है, भक्ति नहीं। बहुत आरती घुमाया पुजारी, डेली चार आरती करता है, मखमल कपड़ा पहनता है, नहीं क्लास में नहीं आता है, सरासरी श्रम केवल मात्र है, कोई भक्ति भक्ति नहीं है, उदंड पूजा करता है, घोषस्तोत्र पाठ करता है, कथा में नहीं आता है, बोले कोरा श्रम केवल है। इस प्रकार अन्य अन्य सारे क्रिया है, भले आपको लगे कि बहुत मोटा कंठी चिता चैतन्य कपड़ा इसे भारी है, लेकिन श्रम एव ही केवलम, कोरा श्रम के अलावा और कुछ नहीं। चैतन्य भागवत में कहा गया, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म पालिते सही रौरव पड़ी मजे। चार प्रकार के वर्ण धर्मी आश्रम धर्मी जब कृष्ण भजन नहीं करते हैं ठीक से, तो स्वधर्म को ठीक ठीक से पालन करने के बाद फल क्या होगा ना, रौरव नरक में पड़ेंगे, मजेंगे मरेंगे, यही फल होगा, कोई रक्षा नहीं करेंगे, है ना। तो सचमुच हम जो कर रहे हैं इतने सारे कार्य, इसके अंदर भक्ति है कि नहीं, ये पहचानने के लिए, जानने के लिए मीटर डालने के लिए यही मीटर दिया। विश्वक्सेन ना उत्पादय रति जदिन, यदि भगवत कथा में रति उत्पन्न नहीं हुआ, चाह उत्पन्न नहीं हुआ, तब तथाकथित जो कुछ आप श्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, भक्ति मूलक आरती भारती जो भी, सारे बेकार है, कथा सुनने में रुचि नहीं, सब बेकार है। इसलिए ये उसका मीटर है, जो भी भक्त है अपने आपको मीटर डाल के देख लीजिए, तुम्हें जो सब कर रहा हूं इतने सारे, चार घंटा छह घंटा आठ घंटा भक्ति है या नहीं। इसलिए ये भागवत कथा के प्रति रति उत्पन्न होना ही भक्ति के प्राथमिक लक्षण, वही टेस्ट है, इसी के अनुसार देखा जाएगा भक्ति अंग रहे कि है कितना है क्या है, ये वही केवल। उसके बाद कहते हैं कि धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य धर्म कांतस्य काम लोभा यही स्मृत। ये दो श्लोक एक साथ करते हैं, कामस्य न इंद्रिय वृत्ति लोभ जीवित जावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। बोलते हैं जो धर्म है, सारे संसार में लोग पुरुषार्थ के रूप में परमार्थ के रूप में चार काम को मानते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोलते धर्म करूंगा, धर्म के अनुसार अर्थ उपार्जन करूंगा। अर्थ किसको बोलते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए काम काम के लायक चीज है, वो आपके लिए अर्थ है, जो काम के लायक नहीं है वो अनर्थ है, जो आपकी आवश्यकता है जरूरी है वो आपका अर्थ है, जो नहीं है अनर्थ है। तो ये जो चाहिए चीज वो कैसे मिलेगा ना, धर्म आचरण करने से प्राप्त होगा, धर्म के अनुसार अर्थ मिलेगा। और धर्म अर्थ काम, काम क्या है ना, उसके द्वारा जिस चीज के द्वारा आपके इंद्रिय को भोग करते हैं वो होता है काम, काम को भोग करते हैं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा जो वस्तु भोग करते हैं वही काम। और उसके बाद में भक्त भक्त अंत में मुख्य कामना करना चाहिए, लेकिन आजकल तो मुख्य को तो बात दो कोई नहीं करते, उसको छोड़ दो, त्रिवर्ग चतुर्वर्ग नहीं है आजकल, आजकल चतुर्वर्ग नहीं बोले त्रिवर्ग हो गया। त्रिवर्ग क्या है, धर्म अर्थ और काम, लेकिन त्रिवर्ग भी खत्म हो गया, धर्म को निकाल देते हैं, दो वर्ग रखते हैं अर्थ और काम। आजकल के संसार केवल दो वर्ग में चलता है, पैसा चाहिए और इंद्रिय तृप्ति चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, धर्म कर्म सब खत्म, कुछ नहीं। इस दो वर्ग में हम पड़े हुए हैं, बोलते नहीं ये नहीं होना चाहिए। जीविका आजकल तो धर्म मानते तो इसको माने कि आप आपने पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छे से कंपटीशन देकर नौकरी कर लो, एक जॉब करो, वही आपका धर्म हो गया, बाकी नौकरी करने के बाद ना फिर शादी करो, अपने माता पिता को घर से निकाल दो, आप अपना घर बढ़ा लेकर रहो, यही धर्म हुआ है ना। नहीं बोलते हैं धर्म का अर्थ केवल अर्थोपार्जन नहीं है, जितने अर्थ चाहिए इतना ही आपको उपार्जन करना चाहिए, उससे यदि थोड़ा ज्यादा किए तो उसको धर्म नहीं कहा जाएगा, वो धर्म नहीं कहा जाएगा। न अर्थाय उपकल्पते। समस्त वृत्तिपरक कार्य धर्म को वृत्तिपरक कार्य कहते हैं। वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मुख्य के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। बोलते हैं हमारा शरीर है जो इंद्रियों से बना हुआ है तो उसको तो कुछ तो चाहिए भोग। बोलते हैं हाँ चाहिए, आप यहाँ से वो वहाँ तक जाना है, गाड़ी में जितने पेट्रोल डालना चाहिए इतना डालना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहते हैं टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, जितने आवश्यक हो इतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। अपने शरीर में प्राण मेंटेन हो जाए, मैं बच के रहूं, इसके लिए जो आवश्यकता है मिनिमम, इसको ग्रहण करो भोग के रूप में, उससे ज्यादा नहीं। बोलते हैं जो मनुष्य शरीर मिला है, किसने मिला? जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा। इस मनुष्य शरीर का एकमात्र लक्ष्य क्या है कि किसके लिए मिला है? तत्त्व जिज्ञासा के लिए। नहीं तो मनुष्य शरीर क्यों मिला आपको? आप बोलेंगे हम तो वही तो नहीं करते, तत्व जिज्ञासा मुझे पता नहीं, फिर क्या करते हैं ना? हम तो बस नौकरी वाकरी करते हैं, खाते पीते मजा करते हैं, सोते वही करते हैं। बोले इसके लिए फिर कहीं इतनी परेशानी उठाता है ना? नहीं, किसी को अगर पूछो, कोई बहुत समझदार आदमी, उनको पूछो भाई साहब बताओ तो सही एक प्रश्न ना, क्या ना आप क्यों जीते हैं, क्यों जीना चाहते हैं आपने? बोले ये क्या उत्पटांग बात पूछता है, क्यों जीना चाहते हैं? ना हाँ मुझे बताओ क्यों जीना चाहते हैं आपने? कोई तो लक्ष्य होगा ना, कोई एक प्रयोजन होगा आपके इस जीवन अवधि का, जीवन जीने का क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है? कभी कभी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी पूछते हैं, वो बोलते हैं अरे ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है, मैं कितने कितने एग्जाम फेस करके आया कॉम्पिटिटिव वगैरह, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इसे क्वेश्चन कर दिया, उसके क्या उत्तर दूंगा? जीने का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य होता है? तो कुछ तो बोलेगा, बड़े सोच विचार करके बोलता है कि स्वामी जी ऐसा है आजकल संसार में सभी जीते हैं तो इसके लिए ना, किस लिए ना, जन्म होते ही तुरंत कंपटीशन शुरू हो जाता है, हैवी कंपटीशन। छोटे छोटे बच्चे को दो दो तीन तीन कोचिंग ट्यूशन मास्टर लगा देते हैं, बेचारा तो परेशान हो गया, जबरदस्ती ट्यूशन मास्टर लगाते हैं, केजी के समय से ट्यूशन मास्टर लगाए, ट्यूशन लगाते लगाते उनके दिमाग को कूड़ा कचड़ा बना करके कैसे भी उनको बोलेंगे। मैं पूछा क्या सर तो मतलब ही इतने हाई ट्यूशन पढ़ करके कंपटीशन में उत्तीर्ण होना यही जीवन के उद्देश्य? नहीं जी ये तो शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है केवल। कहाँ तक हाई स्कूल पास किया ना, इतने मैंने काम नहीं, फिर कॉलेज में भी, कॉलेज में भी डबल कोचिंग, घर में बाहर में खूब पढ़े रगड़े, कब तक ही लक्ष्य नहीं? ये तो लक्ष्य नहीं, ये तो करना पड़ता है, फिर कहां तक जाए, एंड कहां तक जाए, उद्देश्य क्या है? ना नहीं उसके बाद में तो फिर जब परीक्षा से अच्छा से उत्तीर्ण हो जाए तो उसके बाद में वही लक्ष्य? नहीं 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 नहीं, वो तो पहला कदम है, उसको ना उसके बाद में नौकरी मिलना, नौकर नहीं बन पाया तो जीवन तो बेकार। घर वाले बोलते हैं तेरा जीवन बेकार है, पत्नी बोलती है बेकार है, दोस्त बोलते हैं बेकार है, वो तो कभी कभी सुसाइड करने की मन करता है, क्या हो गया, इतने अच्छा परसेंटेज लाया नौकरी नहीं बन पाया, हाय हाय। तो अच्छा ठीक है, आपको मन चाहे नौकर बना, नौकरी बनना मिल गया आपको, तो वही उद्देश्य? नहीं नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ ना, फिर क्या शुरुआत ना, अभी तो फिर हाथ को तो हाथ होगा, अभी फिर कोठी बाड़ी मोटर ये सब होगा, ये सब तो वही उद्देश्य? नहीं नहीं नहीं, मतलब फिर शादीशुदा हो करके फिर अपने समा संसार बैठाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर तो घरवाड़ी करेंगे, सब ठीक ठाक करेंगे, फिर उद्देश्य क्या है? ना उद्देश्य स्वामी जी, अब तब तो उम्र हो जाता है ना, तब तक तो उम्र हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? आप एंड क्यों नहीं बताते कहां तक, इसलिए जितने भाई इतने भारी परिश्रम किए, इतने कठोर परिश्रम करते करते अब एंड कहाँ है, कहाँ लक्ष्य क्या है आपका? ना क्या बताऊँ, तब तो उम्र ही हो जाती, उम्र मतलब क्या होता है ना, अब तो फिर जाने का टाइम आ जाता है, फिर जाना ही पड़ता है। तो मैंने पूछा कि सर तो फिर तो यही एंड है ना, उसके बाद तो दी एंड वही, उसके बाद फिर कुछ ही नहीं, सीन ऑफ, फिर तो सीन क्लोज हो जाता है। तो कल जब सीन क्लोज होना ही दी एंड है, वही लक्ष्य है, उद्देश्य हुआ, तो उसके लिए इतने मारे परिश्रम क्यों करते हैं? जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो क्या नहीं मरते? वो भी तो मरते हैं, जो करते हैं वो भी तो मरते हैं, जो नहीं करते वो भी तो मरते हैं, तो फिर ये करने का क्या जरूरी था? जब दी एंड वही है, जो लक्ष्य वही है, तब ये सब करने का नाटक क्या जरूरत था? ये तो होना ही है। और ये बात भी बता दूं आपको, आप इस जीवन में बहुत प्रयास करके बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त किया, बहुत बड़े म्यूजिशियन बना, बहुत बड़े सिंगर बना, बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बना, बहुत बड़े एक्टर बना, बहुत बड़े साइंटिस्ट बना, डॉक्टर बना, सारे उपाधि, सारे खेल खत्म हो जाएगा, कोई 0% भी नहीं मिलेगा, जब शरीर गया सब गया। शरीर बदलने के बाद कोई आकर दोबारा कोई जन्म लिया होगा आकर बोलेगा कि मैं डॉक्टर साइंटिस्ट हूं, कोई मानेगा नहीं, दोबारा एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, सब गया। शरीर के साथ सारे डिग्री मिटिया मिट खत्म। कितने बल बयस समय लगा करके किया था, जो गया सो गया खत्म, एक पैसा की मूल्य नहीं उसमें। तो फिर भी हम पागल इसी के पीछे पड़े हैं, ये कोई तत्व नहीं है। असली तत्व क्या है? जो सारे आवश्यक दर्शनीय चिंतनीय श्रवणीय जो वस्तु हम जो देखे सुने सोचे, इस जो वस्तु के बारे में हम देखते सुनते सोचते पाना चाहते हैं, इस सारे वस्तु का जो बिल्कुल मूल वस्तु है, मूल पदार्थ है, वो होता है तत्व, उसको तत्व कहते हैं। लेकिन हम लोग का ये दुर्भाग्य है, हम हमेशा, हमारा सभ्यता ही ऐसा हो गया, आधे से जाते हैं, स्थूल से जाते हैं, मूल कभी नहीं देखते, मूल को देखने से सुधर जाते हैं। अभी भी जितने पढ़े लिखे लोग को इधर बैठे होंगे, आप सब जानते होंगे, वैज्ञानिक मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, जो भी सब सूत्र उत्तर फॉर्मूला से पढ़े हैं, सबका शुरुआत कहां से होता है? सपोज मान लो ए इज इक्वल टू बी, ए ना है ना, सपोज से शुरू होता ना, सपोज होता क्या है, सपोज क्या होता है, मान लो क्या होता है, अरे जो होता है तो होता है, फिर मान लो क्या, ये केवल धोखा देना है, मूल नहीं है, बेसलेस। सपोज क्या होता है? कोई मूल नहीं देखते हैं। कभी कभी बैठ कर सोचते हैं, आकाश को देखते हैं, इतनी बढ़िया चंद्रमा है, इतने सारे तारा है, इतनी बड़ी आकाश है, कैसे बना, कौन बनाया? तो फिर हमारे तथाकथित साइंस विज्ञान शास्त्र देखते हैं, वो क्या उतार देते हैं, बोलते कुछ नहीं, एक धमाका सा हुआ वो निकल पड़ा, सारे एक थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, कि बहुत बड़े धमाका हुआ, ये सारे तारा निकला, चंद्र निकला, कोठा निकला, जीव जंतु निकले। ये वैज्ञानिक अपने कूड़े कचड़े दिमाग में हम भरते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, याद करते हैं उसको। अरे बुद्धू, जब एक बिग बैंग एक धमाका हुआ, ये सारे सब निकल पड़ा, तो ये अब छोटा सा एक कोठी घर बनाने के लिए इतने ईंट सीमेंट छड़ी क्यों निकालते हैं? एक आवाज कर दो ना, निकल पड़ेगा। बड़ा धमाका से विश्व, छोटे धमाका कर दो, आपके घर बन जाए, बनेगा क्या करें? बोले नहीं, सृष्टि ऐसा, हमारे जीव कैसे आए, हम लोग कैसे बने? तो फिर वैज्ञानिक ने शोध करके निकाल कर, इसको हम बहुत पढ़ के याद करके लिखते हैं, उसके अंदर परीक्षा में पास भी करते हैं, कि नहीं जी वो एक एमीबा था, एमीबा फिर से बढ़ करके फिर वो प्राणी हुआ, फिर बढ़ते 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 फिर बंदर हुआ, फिर बंदर का पूछ कट गया, फिर हाथ पर हो गया सीधा, फिर आदमी हो गया। मतलब हमारे एंसेस्टर्स जो हम पूर्व पुरुष कौन है, सारे बंदर थे। अरे भाई तुम्हारा पूर्व पुरुष बंदर होंगे, हमारा पूर्व पुरुष ऋषि मुनि गोत्र मत्स्य गोत्र, हाँ भरद्वाज गोत्र, ये तो कोई बंदर गोत्र को ही नहीं कहा, ये वैज्ञानिकों का गोत्र बंदर गोत्र हो सकता है, वो इसे थ्योरी कहेंगे। अरे जब भी आपके बात को मान लो कि नहीं ऐसे अमीबा से बढ़ते बढ़ते बंदर होकर के मनुष्य बने, तो आजकल हम बताते हैं अफ्रीका के जंगल में 50,000 बंदर थे तो मनुष्य हो जाना चाहिए, नहीं होते, क्यों नहीं होते? तभी हो तब नहीं बनते, बदल क्या क्या रूल, क्या कहें, सारे कूड़े कचड़े इकट्ठा करके उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, कोचिंग भी लेते हैं उसके बारे में, परीक्षा देते हैं, अब क्या बनेंगे, बवंडर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जता माया रा वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माये जीव को कराए गाधा। बुरा ना मानना, हो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोलते हैं ऐसा है, एक गधा को बढ़िया ड्रेस पहना दो, बढ़िया सा कस्टली ड्रेस पहना दो, मोटा तिलक लगा दो, कंठी लगा दो, और पूरा लाइब्रेरी लोड कर दो उसका ऊपर में, हाँ, और उसमें साइन बोर्ड लगा दो महापंडित, डिग्री सारे लगा दो, अमक डिलीट दी अनर, कितने सारे जो ग्रेजुएशन जो डिग्री सारे लिख दो, क्योंकि सारे किताब लेकर ढोकर चल रहा है हमेशा, हाँ, गधा पूछेगा, हाँ सारे शास्त्र मेरे ऊपर है, सब शास्त्र में धारण किया हूं, सब शास्त्र धारण किए तो हो बोल सकता, रेंकूंगा, गधा क्या बोलेगा, गधा का आवाज सुने ना, ऐसे आवाज करेगा, सारे शास्त्र तो पीठ भी लोड किया है, लेकिन इसमें पंडित हो जाएगा क्या, कैसे हो? इसको कहते हैं जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनानांगहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति, जिसका स्वयं का समझने का दिमाग नहीं है, प्रज्ञा चक्षु नहीं है, अपना विवेक नहीं है, उनका शास्त्र क्या मदद कर सकता है? सारे शास्त्र को ढोकर घर में रखा है लेकिन गंड मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, शास्त्र से क्या मदद कर सकता है? ठीक जैसा जो जन्मांध है जिसका दो आंख दृष्टि शक्ति नहीं है, उनको फर्स्ट क्लास 2000 रुपए का बेल्जियम ग्लास गिफ्ट दो, उसका क्या काम में आएगा? लोचनानंग भी नस्ती दर्पण किंग कर, इसी दर्पण से क्या करेगा जिसका आंख नहीं है? ठीक इसी प्रकार हम लोग का हाल, तो इस प्रकार जब तक हम अपने आप को नहीं जाने, नहीं समझे, क्या जाने कि मैं क्या हूं, किस लिए हूं, ये संसार क्या है, ये प्रकार की चीज को हम नहीं जाने तो हमारा विकास कभी हो ही नहीं सकता। कम से कम इतना तो जानना चाहिए। इसी को कहते हैं जीव का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा, जिज्ञासा करना चाहिए कि क्यों मेरा, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अगर एक बारे में सोच के देखा जाए, हम बोलते हैं सब इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे कोई लोग होते हैं सेम डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, एक ही ऑफिस में रहते हैं, लेकिन एक की सुविधा दूसरे सुविधा से अंतर है, दूसरे को एक कार मिला है, एक नौकर मिला है, फ्लैट मिला है, दूसरे को एक मोटरसाइकिल चढ़ के जाता है, वो तीसरा एक साइकिल चढ़ के जाता है, क्यों भाई उनको इतना ज्यादा सुविधा क्यों, उसको कम क्यों, है ना? नहीं, एक ही फैक्ट्री है, तीन प्रकार के लोग काम करते हैं, तीन चार प्रकार के लोग, एक लोग जाता है साइकिल चढ़ के टिफिन लेकर सुबह से जाता है, 8 घंटा रगड़ करके हथौड़ी चलाता है, काम करता है, भारी श्रम करता है, उनको 4,000 रुपया मिलता है, बेचारा आता है। वही फैक्ट्री में दूसरा एक लोग जाता है, वो मोटरसाइकिल चढ़ के जाता है, जो पहला ग्रेड का साइकिल चढ़ के जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर, श्रमिक वर्ग है। दूसरा जाता है मोटरसाइकिल चढ़ के, वो कुछ काम नहीं करता, मोटरसाइकिल चढ़ के जाता, जा करके केवल बोलता है ऐसा करो, ऐसा करो, इधर करो, उसको इधर लाको, केवल बोलता रहता, कुछ करता धरता नहीं है। उसको 8,000 मिलता, डबल तनख्वाह मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर। वो शरीर से काम नहीं करता, वो कैसे करता है, वाणी से काम करता है वो ज्यादा है, और एक आदमी होता है वो कार चढ़ के जाता है मोटरसाइकिल में, वो बोलता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप जाकर ऑफिस में बैठता है, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस आता है तो फाइल में साइन कर देता है बस बैठता है, और उनका तनख्वाह तो उससे ज्यादा और फैसिलिटी ज्यादा, उसको बोलते हैं मैनेजर है। और एक आदमी जाता है तो उसके पीछे कार ड्राइवर रहता है, और जूता पहनाने वाला एक रहता है, उनको झाड़ू देने वाला एक रहता है, उनको ले जाते हैं लिफ्ट में बैठकर ऑफिस में, इसे मूविंग चेयर में बैठता है, कुछ नहीं बैठे बैठे आता है, बोलते हैं कोई एमडी है डायरेक्टर है। ऐसा क्यों है? एक ही जगह में एक ही फैक्ट्री में काम करते सबके ऐसी सुविधा अलग अलग है क्यों? जिसका जितना दायित्व है उनका इतना ही उनको फल प्राप्त होता है। जो आदमी कुछ नहीं करता है, कोठी मोटर गाड़ी ड्राइवर बड़े ऑफिस चुप बैठता है, वो एक आदमी हजारों श्रमिकों को मेंटेन करता बैठे बैठे मन में काम करता है। तो जब उनके इतने सुविधा कंपनी की तरफ से मिला है तब इसका उतना उत्तरदायित्व भी है ना, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी तो इतनी सुविधा मिला है। तब थोड़ा हम लोग के बारे में सोचिए, जितने सारे और प्राणी है पशु पक्षी इतर प्राणी जितने हैं उनके सुविधा की तुलना से हम मनुष्यों की सुविधा सबसे ज्यादा है ना, नहीं है ना? नहीं, अब रास्ता में जाते हैं प्यास लगा, बहुत बढ़िया कोई बदान्य प्याऊ लगा दिया है, ठंडे पानी का फिल्टर पानी का प्याऊ लगा है, एक गाय भी जाता है एक कुत्ता भी जाता है, दोनों को प्यास लगा है, हमको प्यास लगा है, हम गए टैप खोल कर फटाफट पानी पिए गिलास भर के वो चले आए, उन दोनों प्राणी बेचारे को प्यास लगा पी सकते हैं? फ्री है पी नहीं सकते, कोई पिलाए तो पिए नहीं तो नहीं पी सकते, कितने दुख है देखिए। एक छोटा सा नमूना मैंने बताया, तो हर स्थिति पर हमको कितने फैसिलिटी मिला है, जब इतना फैसिलिटी हमको भगवान ने दिए हैं तो उत्तरदायित्व भी इतना होना चाहिए ना, ड्यूटी भी तो ऐसा होना चाहिए। ड्यूटी क्या करते हैं हमने पशु की तरह? पशु पक्षी सुबह से शाम तक क्या उनके विचार है? उठते ही चेंचे कहके किचड़ मिचड़ जो किए किस लिए करते हैं? कहां से भोजन मिले, कहां से भोजन? उनको कोई ब्रश करना है, नहाना धोना थोड़ी करना है, कपड़ा लत्ता पहनना है, उठते ही खाना, खाने के बाद सोना और फिर संतान उत्पन्न करना और लड़ाई झगड़ा करना, बस चार काम उनका है, आहार निद्रा भय मैथुन च, ये तो कंपलसरी सारे पशु पक्षी हम भी वही करते हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा तो करते नहीं। जितने इतने सारे डिग्री पढ़ाई लिखाई सब करके गोठी बाड़ी करके यही चार काम से कोई पांचवा काम करते हैं तो कहा कि मनुष्य कहलाएंगे? मनुष्य पदवाच्य तभी हो सकता है जब आप इस चार सामान्य कर्म को छोड़ करके आहार निद्रा भय मैथुन को छोड़ करके एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, क्या है? धर्मेन हीना पशु ही समाना, धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो, उन लोग के लिए एक अधिक क्रिया है जो है धर्म आचरण, जो धर्म आचरण नहीं करते हैं वो पशु ही समान, पशु के समान है, बिल्कुल पशु है। बोलेंगे नहीं जी हम पशु क्यों कहते हैं, हमको हम मनुष्य हैं पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, हमने पशु क्यों कहते हैं, हम पशु नहीं। अरे भाई पशु के जैसे नहीं काम, पशु की तरह थोड़ी करते हैं हम, क्यों नहीं करते भाई? खान पीना नहीं, खान पान पशु जैसे हम थोड़ी करते हैं, आप कैसे करते हैं ना? पशु तो रोड के ऊपर ऐसे खा लेता है, प्लेट में थोड़ी खाता है, हम तो डाइनिंग टेबल में बैठ करके प्लेट लगा करके चम्मच से खाते हैं, बढ़िया कई कई आइटम खाते हैं, उसको थोड़ी पशु तो ऐसे ऐसे खा लेता है, एक आइटम चाट चूट करके थाली फाली नहीं इसी के रोड खा लेता है। और खाना सोना, सोना भी वो तो पेड़ के नीचे ऐसे सो जाता, हम तो सोने के लिए मच्छरदानी लगा करके अलाउट एसी चालू करके और क्या क्या करके फिर सोते हैं। तो शास्त्र कहता है कि हाँ ठीक है, आप पशु का जो काम वही काम तो करता है लेकिन थोड़ा परिमार्जित वे में करता है, थोड़ा तरीका आपका अलग है, थोड़ा ढंग से करता है, थोड़ा अच्छे ढंग से खाता है, अच्छे ढंग से सोता है, अच्छे ढंग से संतान उत्पन्न करता है, अच्छे ढंग से वो चार काम करता है। तो मतलब फिर काम तो वही करता है लेकिन तो आपको हम ऐसे पशु नहीं कहते, ढंग के पशु है, मतलब सिविलाइज्ड एनिमल, वो असभ्य पशु आप सभ्य पशु है, थोड़ा अच्छे प्रकार से वही पशु के काम करता, लेकिन अच्छे प्रकार के पशु है हमने, लेकिन मनुष्य नहीं कहे। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस चार से अधिक एक धर्म आचरण नहीं करोगे तब तक मनुष्य पदवाचन नहीं। आप बोले कि धर्म 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 है क्या चीज, धर्म किसको कहते हैं? बहुत बहुत धर्म हम सब देखते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म वो धर्म, ये सब आपने बनी मनाई धर्म है, कोई धर्म नहीं है। धर्म ही एक होता है, वो क्या होता है? धर्म तो सख्यात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है धर्म। धर्म शब्द को अगर शाब्दिक व्याख्या किया जाए तो उसका अर्थ होगा धारयति इति धर्म, जो धारण कर रखा है वही धर्म होगा, जो आपके सत्ता जिसके ऊपर टिका हुआ है उसको धर्म कहेंगे, है ना? नहीं, अभी समय हो चुका है तो आगे नहीं बढ़ेंगे फिर हम, नहीं बस 15 मिनट आगे चला गया क्या? नहीं बंद करें ना, हाँ ठीक है, ठीक है आगे काले चलेंगे। आरती के आयोजन के बाद
हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर ने शक्ति आश्रय दशा महाराज जी का, इतनी सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम की विवेचना कर रहे हैं महाराज कि साक्षात अमृत वर्षा इसे कहना चाहिए, और साथ साथ महाराज जो भी कथा है उसे ऐसे पॉइंट्स